ऐसी चीजें बेचना, फिल्में, ड्रामे, जिनसे लोगों में ठीक है, लेकिन अगर वो टीवी जो है वो ऐसी चीजों के इस्तेमाल हो रहा है कि जिससे हराम हलाल की हदें झुकती हैं, फोहश, गाने, म्यूजिक, फिल्में, ऐसी तमाम चीजें जिससे किसी सोसाइटी में नाहक फैले या बातिल फैले, इन सबको भी नहीं लेना। अब अगर आप इन सारी चीजों पर गौर करके देखें तो माले हक में जो मेरा अपना है वो तो मेरा है। अल्लाह ताला कहता है खाओ भी और खिलाओ भी, खुद ना रखो बल्कि दूसरों को भी दो। दूसरी सूरत यह है कि दूसरों का माल, थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूंगी क्योंकि बास दफा हम इन बड़ी बड़ी चीजों को सुनकर सूद, जुआ, शराब में छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। मसलन आप देखिए कि किसी का वो माल या वो कोई चीज जो सिर्फ मोरबतन कोई आपको खिलाए, कुछ दूसरी चीज रस्मत, क्या करें मौका रिवाज है। तीसरी वो सूरत जिसमें इंसान पीयर प्रेशर की वजह से नफ्स के साथ कोई कमा खिलाए तो खाए। बस आप देखिए कि आज हमारे यहाँ बासभा मरने और जीने और शादी और ब्याह पर कुछ ऐसी रस्में बन गई कि जिसको मारे बांधे गरीब लोगों को करना पड़ता है। बस आप देखिए कि जब कुछ बच्चे हैं, एक औरत है, उसके शौहर फौत हुआ और बच्चे भी छोटे हैं। अब एक दो तीन दिन तक बात चलती रही। अब क्या हुआ कि तीसरा दिन है, खाना पकाओ, देगे पकती हैं, मीठे चावल पकते हैं। मुझे कभी समझ नहीं आती कि लोग तीजे पे मीठे चावल क्यों पकाते हैं। कहते नहीं, ये बूढ़ा होके मरा है तो अब इसकी बहू बेटियों को जोड़े भी दो, ये माले ना हक है। एक वाक्य मैं अक्सर ही सुना देती है रायतों को इस मौसम पर जब भी बात होती है कि एक औरत थी फैसलाबाद की दिल्ली कहीं रहती थी, तो उसने शेयर किया था एक बार ये बात किसी से कि जब उसका शौहर फौत हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे और दिहाड़ीदार जैसे लोग होते हैं डे टू डे लाइफ के, जो हाथ में जो चीजें थी वो तो खत्म हो गई, दूसरा तीसरा दिन भी हो गया। अब फिल्म की तैयारियां थी तो पुरजोर खानदान की तरफ से एक मतलब कह लीजिए कि खामोश किस्म का प्रेशर होता है कि चिल्लम का खाना पके। कहती कि मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा कोई प्लॉट था जो मियाँ ने छोड़कर भी इतनी जिंदगी में लिया होगा। कहती मेरे पास वही था, मौलवी साहब के पास गई। अल्लाह जाने वो मौलवी साहब बेचारे किस स्कूल के पढ़े हुए थे, तो उन्होंने जाके उसने अपनी सिचुएशन बताई कि मेरे पास कुछ नहीं सिवाय इस प्लॉट के, तो क्या फिर भी मुझे चेहलम का खाना खिलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर बख्शा जाए तो खिलाना ही पड़ेगा। और उन्होंने वो बेच के तो चेहलम का खाना खिलाया। ला था फिर मुंबई ना को मिल जाते, ये बात ही हो जाएगा। आप देखिए कि आज हमारे मुल्कों में लोग पिस जाते हैं, कुछ लोग तो वो है ना कि जो कर सकते हैं, जिंदगी का मरकज है, मेहरबानी अपने बच्चे हैं, तो वो तो कहते हैं कि बच्चों की शादियों के लिए तो कमाते हैं, अब शादी पे ना लगाया तो कहाँ खिलाना है। वो तो एक शादी को 8 दिन की बना के तो एक दिन शादी ब्याह मंगनी उठन और न जाने माइयां क्या क्या करके खिला देंगे, लेकिन जो गरीब बेचारे बीच के फंसे हुए लोग जो इधर और उधर से ना फंसे हुए वो क्या करें। तो कभी भी किसी की कोई चीज अगर आप इस सोच से खाते हैं तो पहले अगले से पूछ तो ले कि तुम चाहते हो ऐसा करना। बस दावतें हमारे यहाँ मजबूरी के नाम पे पकती हैं, जो कि सारे खानदान वाले ये दावत पका रहे हैं तो हमें भी पकानी पड़ेगी, वरना लोग कहेंगे ये कैसी बहन है, इनकी इनको तो खुशी नहीं हुई। तो खुशी खुशी खाएं, किसी का माल खाएं, और कैसे खाएं इसका तरीका जो है सूरत नूर में हम पढ़ेंगे। अकेले भी खाओ, सामने भी खाओ, बैठ के भी खाओ, लेकिन आप यहां से दीन इस्लाम का हुसन देखिए कि कितनी छोटी छोटी चीजों पर हमें गाइड करता है। और वो मैं कोई कानून नहीं था जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला तो सब में हासिल की हुई औरतों और मर्दों के हुकूमों कर दिए, तो कहां पे ये कुछ नहीं होगा। अब एक सवाल का बात है सिर्फ कि क्या सिर्फ खाने की बात है ला ताकुलों वाला को अकल या कि ला तशरीबो क्यों नहीं था बात समझे यानी किसी की कमाई खराब है या किसी के कमाई में नाहक है तो क्या सिर्फ खा नहीं सकते बाकी पी सकते हैं या फिर हम कुछ और भी उसकी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं तो उलमा किराम कहते हैं कि जब कोई चीज इंसान खाता है ना तो वो जिस्म का हिस्सा बनती है और उसका असर जिस्म में खून की सूरत में जरे जरे में पहुंच जाता है तो गोया के लातापलू कह के हर चीज से रोक दिया गया। बहरहाल इसमें बहुत सारी भी बातें हैं वो इंशाल्लाह अपने मौजू में और भी डिटेल से आगे करेंगे। एक छोटी सी बात करके आगे चले जाते हैं और वो क्या कि अगर कोई मजबूर कर दिया जाए मिसाल है कि कोई बीवी है शोहर की कमाई ऐसी है या सो ऑन जो भी आप डिटेल दें वैसे मस्त था तो अल्लाह से उतना डरो जितना तुम डर सकते हो और इस हद तक के सिर्फ कूते लाए भूत इतना खाना कि जिससे इंसान मौत से बच सके फिर उसमें दावतें पार्टियां और खुशी और फिर कहना क्या करें मियां ये काम छोड़ते नहीं है। मैं पूरे यकीन और शौर से आपको कह सकती हूँ कि जब किसी को इसका यकीन हो जाएगा ना कि आप इस वजह से उसका माल नहीं खा रहे कि उसमें कोई आमेजिश है यकीन करें सालों के सफर को महीनों में बदल देगी ये चीज। ये टॉर्चर बहुत बड़ा होता है किसी मर्द के ऊपर कि मेरी कमाई को खा लिया बीवी जिसके लिए मैं कर रहा हूँ बच्चे जिनके लिए कर रहा हूँ वो मेरी इस कमाई से खुश नहीं वो कहेंगे मेरी वजह से मुझे नहीं चाहिए 10,000 मैं तुम्हें 2,000 कमा के देता हूँ हलाल से देता हूँ। तो ये जो पीयर प्रेशर होता है ना ये इंसान को मार के रख देता है। किसी को आप देखें कि उसका वो खुद बताए ना तो मुझे और आपको किसी भी चीज के ऊपर जाहिर पे क्यास करता है। कोई कहता है मैं आई लव यू तो कहता है हाँ आई लव यू मैं अंदर से नहीं करती। कोई कहता है मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो और इसलिए कहना भी वही चाहिए आपको अच्छी लगी चीज आप कहते बहुत अच्छी है जुबानी नहीं कहना झूठ नहीं बोलना होता तब कोई आपको कुछ नहीं कहता तो आप भी उसको कुछ ना कहें। लेकिन जब पता चल जाता है कि किसी की कोई चीज ऐसी है और वो आपके सामने जाहिर पे इसको दिख रहा है ये मामला तो आप ना सिर्फ ये कि खुद उससे बचे बल्कि दूसरे को भी बचाएं। अब इस सारी चीजों के बीच में कि जिसमें बातिल तरीके से ना खाओ मगर इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिन मिनकुम यहां लिखिए पूरी आयत पढ़ेंगे तो आपके साइज का इल्ला मगर अन तकूना ये के हो तिजारतन वो तिजारत अन तरादिन मिनकुम बाहमी रजामंदी से यानी जो काम कर दोनों की लेन और देन हो किसी को कोई चीज ले रहा है कोई दे रहा है आपस में तबादला हो रहा है किसी ने चीज दी उसके पैसे आगे अगर कोई ऐसी सूरत हो जाए तो फिर जायज है। अब यहाँ पे रुक जाते हैं वक्त का लफ्ज भी बता रहे हैं ये है इस्तिस्नाई सूरत के हर वो चीज जिसमें किसी का हक मारा जाता है उसकी तो इजाजत नहीं है लेकिन जब कोई बंदा दूसरे के साथ मिलके कमाता है मिसाल है कि आप देखिए कारोबार होता है हम जाते हैं चीज खरीद लेते हैं और पैसे देते हैं चीज लेके आ जाते हैं तरादिम बहना ठीक है नो प्रॉब्लम आपको महंगी लगती है आप ना लें। इसी तरह किसी की किसी कारोबार के साथ से बात हो जाती है तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि किसी के साथ तिजारत करना और फेयर बेसिस पे करना ये अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में आता है कि सादिक ताजिर सच्चा ताजिर जो है कयामत के दिन अंबिया कराम और शुहदा के साथ होगा। यहां से आप देखिए कि नौकरी करना मुलाजमत करना किस किस नई सूरत है गलत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं वो सिर्फ नौकरी के छूटने का डर रखते हुए उनकी गलत बात को भी मान जाते हैं ये दुरुस्त नहीं है। फिर इसी तरह आप देखिए कि तिजारत और लेन देन की बुनियाद के भी बहुत सारे असूल हैं अल्लाह करे कभी जिंदगी में मौका मिले तो आप हदीस से बाब मदारत पढ़ें व्यू है तिजारत ये कितने इतनी बारीकियां मैं आपको एक रिकमेंड करूंगी तहसीरुल कुरान एक तफसीर है एक तो आसुनल बयान है ना जो आपके रमजान में भी अक्सर आपके हाथ में मिलता है एक जिल्द का कुरान है एक चार जिल्दों की तफसीर है तहसीरुल कुरान अगर आप में से कोई भी पाकिस्तान जाता है तो अपने लिए मंगवा लें इधर चाहिए इधर बता दे आपके लिए मंगवा दें। उसमें उन्होंने फी जमाना बातिल क्या क्या चीजें प्राइस बोर्ड और लाइक इंश्योरेंस का काम उसकी आज के दौर की बहुत ज्यादा डिस्कशन की हुई है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और दो सवाल आज दिनों में उठते हैं अमूमन ठीक है। अब इसी तरह मिसाल है कि बाद में रजामंदी आप जूता खरीदने के दुकानदार ने कहा कि ये 500 रुपए का जूता है आप उसको कहते हैं ठीक है इतना ठीक है नहीं 450 का कुछ है, ये जो बार्गेनिंग करते हैं ना हमारे कल्चर में, आपको तो इसकी इजाजत नहीं है, बिल्कुल इजाजत नहीं है। लेकिन आप जरा देखें कि कारोबारों में जिन लोगों ने इनका वास्ता पड़ा है वो 1000 की चीज बता के 200 रुपए की दे देते, बदल के उनको भी पता है कि इन्होंने बोलना कम करना। इन मुल्कों में जहां आप रहते हैं कभी एक पैनी भी कम करवाई, क्यों कराई नहीं, क्योंकि हमें पता ये करेंगे नहीं, वो लिख दें कि इस पे 50% डिस्काउंट है या 10% है, वो आप उनकी मर्जी है, हम चेंज नहीं करते और ये सरासर फेयर है। तो किसी को इतना मजबूर कर देना कि वो फिर मजबूर हो के आपको दे दे, फिर वो कहते हैं जी बाजी आपके लिए इतने की, जी आप कहती हैं तो दूसरे के लिए नहीं, वही चीज एक को 100 की बेच रहे होते हैं दूसरे को 500 की बेच रहे होते हैं, कोई गोरा आ जाए उनके सामने 2000 की भी बेच जाएंगे कि भाई इन्होंने कौन सा पूछना। तो जायज भी है लेकिन इसको बहुत सीधा रखना चाहिए। अब जरा नोट कीजिए कि अगला हुक्म के वला तक तुलुअल फुसकुम और अपने आप को कतल ना करो, ऐसे नहीं लग रहा कि बिल्कुल ही दो मुख्तलिफ चीजें, एक तरफ पीछे हम कुछ और पढ़ रहे थे, यहाँ एकदम आले बातें लग हक की बात हो गई और कतल की बात हो गई। तो अब यहाँ अपने आप को कतल ना करो, इसकी मुफस्सरीन ने फिर एक से ज्यादा तफसीलें बयान की है। कहते हैं कि अगर आयत का पिछला हिस्सा देखें जो कि हम देख रहे हैं कि जिसमें अपने कारोबार के अंदर लोगों के मर्जी के साथ अपने यानी सारी बात में रजामंदी के साथ खाओ, तो वो कहते हैं कि दूसरे का माल नाहक खाना खुद को हलाक करना, और हलाकत है ना, एक मुसलमान जब दूसरे का माल खाएगा तो क्या होगा, इससे दुनिया में पूरा सोशल सेटअप जो वो बिगड़ जाता है, इंसानों का बुरे नतायज भी होते हैं, इसी से हराम तरीके आम हो जाते हैं और आखिरत की सजा तो बनी जाती है, ठीक है। लेकिन दूसरा अगर इसका मान क्योंकि इस सूरत में आप देखेंगे कि इंसान को सुसाइड इस्लाम में अलाउड नहीं है, ये आपके पास आयत आ गई, इसका आप नंबर नोट कर सकते हैं कि तुम खुदकुशी से बचो। तीसरा इसका मानी है कि दूसरे को कतल ना करो, ये मौजू आगे भी आता है और पहले भी आता है। अगर आप यहाँ खुदकुशी को देख लें तो खुदकुशी से क्या मुराद है, सुसाइड करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने खुद को कतल किया अल्लाह सुबहाना ताला उसको क्यामत तक वही हथियार देगा जिससे उसने खुद को मारा, और वो रोज खुद को मारता रहेगा, और मौत की वो तकलीफ जो किसी को एक दफा भी आ जाए तो कहते हैं कि उसका जायका 500 साल तक नहीं भूलता, वो हर वक्त वो मौत के जायके को चखता रहेगा। खुदकुशी इस्लाम में हराम है। ये है खूबसूरत दीन हमारा, और इस्लाम देखिए किसी की जान और उसके माल का एहतराम सिखाता है। ये दलील है कि किसी सोसाइटी में अमन चाहते हैं आप, वहां की सोशियोलॉजी को अच्छा करना चाहते हैं तो लोगों की जानें भी महफूज हों और उनके माल भी महफूज हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के खुतबे में क्या कहा कि लोगों तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज्जतें एक दूसरे पर हराम है, जैसे ये शहर, ये जगह, ये महीना हराम है। यानी हम कितना रोते हैं हज के दिन को, हाय बैतुल्ला, हाय हज करे, हाय जुम्मे का दिन हो, हाय अरफे का दिन है। हज के रिचुअल जब चल रहे होते हैं तो हम इधर भी रह के उधर ही होते हैं, इसी तरह होता है ना। लेकिन आप देखिए कि उनकी इतनी हुरमत है और दूसरे की जान लेनी, जान ना ले इज्जत लेते हैं कि नहीं लेते हैं, गिनते जब दूसरों की करते हैं तो कई इज्जत लेते हैं हम ठीक है नहीं लेते, जब हम दूसरों को ताने देते हैं, इल्जाम लगाते हैं तो इज्जत होती, और माल आप देख लीजिए सगे भाई अमल करते हैं, तो वो जो दुनिया है ना जिसको वल्लाहु यदुकुम इला दारुस्सलाम, वो दारुस्सलाम है जन्नत, ये दुनिया दारुस्सलाम बन जाएगी। जन्नत का असल हुस्न क्या आपको पता, कि वहां कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा। दो दफा तो कुरान का लफ्ज मुझे भी याद आ रहा है, कहते ला तस्मउन फीहा लागिया, तुम उसमें लव बातें नहीं सुनोगे, और एक जगह ला यस्मउन फीहा लहवा वला किज़्ज़ाबा, ना झूठ सुनेंगे ना। ये दुनिया भी जन्नत बन जाएगी कि जहां कोई किसी को दुख ना दे, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड की बातें नहीं है, मुस्लिम स्टेट ऐसी भी होती थी। अब दौरे फारूकी का कोई ना कोई पहलू, इतना अमन और चैन था कि लोग हाथों में माल लेके फिरते थे कि कोई हमसे हासिल कर ले और हम उसको दे। पीछे से सिस्टर है ना, इनको बुला दे, अगली चेयर खाली है, तो बहुत सबसे अच्छी चलेगा। तो आप देखिए कि जब किसी को फिक्र हो, मिसाल है कि आप और मैं इधर बैठे हैं पढ़ने के लिए आए ना, आपको यकीन हो कि पीछे आपके घर में चोरी नहीं होगी। सोचिए जरा, जो चीज जहां चोरी, घर में रहने वाला भी कोई नहीं देखेगा, और खुदा ना खासा बाहर से भी कोई ऐसा चोर आ ही नहीं सकता क्योंकि इस मुल्क में बड़ा अमन है। आप यहां आ गए, आपको सिक्योरिटी का एहसास होगा, बिल्कुल होगा ना। फिर आप सोचते हैं कि आप कुरान पढ़ने आए, सुनने आए, आप थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, पॉसिबल है, हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रास्ते में ट्रैफिक भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ हो सकता है। आपको ये सुकून है कि जब मैं घर जाऊंगी तो कोई आगे से मेरे ऊपर बरस नहीं पड़ेगा, मुझे ताना नहीं देगा। तो सच बताए कि क्या आपकी दुनिया और आपका घर जन्नत का घर नहीं बन जाएगा? तो लादर वलादर औरों को छोड़ दें, अब आप कहेंगे बस यही करो ना, तो याद फिर कर लीजिए कि कुरान आप पढ़ रहे हैं, आपके घर वाले नहीं पढ़ रहे। आपके घर में अगर सास हैं, हो सकता है उनका बेचारी बीमार हो, उनका मिजाज कड़वा हो सकता है, वो हो सकता है कि बड़ी शिद्दत से आपको इंतजार कर रही हो और 10 मिनट भी उनको बोझल पड़े, हो सकता है कि आपके शौहर उस वक्त घर में, कुछ भी हो सकता है। आप अपना मिजाज ऐसा रखिए कि उनको आपसे कोई तकलीफ ना हो, और थोड़ी बहुत चीजें अगर जिंदगी में आ जाए तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, उसको बहुत बिग इशू नहीं बना लेना चाहिए। फिर फरमाए अल्लाह का नबीकुम रहीमा, बेशक तुम्हारा रब तुम पर बहुत रहीम है, यानी अल्लाह ताला बंदे के ऊपर बड़ा रहम फरमाने वाला है, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। ही इज योर वेल विशर, ही इज योर सिंसियर, वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। इसकी मेहरबानी है कि तुम ऐसे कामों से रोक रहे जिसको करने से तुम बर्बाद हो जाओगे। अब आप देखिए कि बस ऐसे होता है कि इंसान को बुरी लगती है पाबंदियां, क्या मुसीबत है, क्यों बताया मुझे, क्यों ऐसा किया, दिस एंड दैट। तो आप बताइए कि अगर कुरान हम ना पढ़ते और हमें ये चीजें ना पता चलती, नबी सल्लम के जरिए से ना पता चलती, तो कल क्या मुश्किलें ना जाने पकड़ हो जाती। इसको आप छोड़िए, ऐसे समझिए कि जैसे आप इंग्लैंड आए, आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता, ना आपने पूछना चाहे, और आप सीट बेल्ट बांधे बगैर रोड पे चले गए और किसी जगह कंट्रोल हो गया और आपको हो सकता है 400-600 पाउंड का जुर्माना देना पड़ा, तो क्या उस वक्त आपको खुशी होगी? ना मैंने यहाँ के रूल्स पढ़े, ना मुझे पकड़ो गई क्योंकि मैंने तो पढ़े ही नहीं है, उस वक्त अफसोस होगा। और आपके अगर किसी दोस्त ने आपको बता दिया थे कि देखिए यहाँ आई है तो आपको सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी वरना इसका ये इसकी पेनल्टी है, और वाकई किसी मौके पे कंट्रोल हो जाए और आपने अपनी दोस्त के कहने पे सीट बेल्ट बांधी हुई थी, तो आपके दिल से दुआएं निकलेंगी कि नहीं? यही काम दीन वाले करते हैं, उस बुरे वक्त और बुरे इंजाम से दो चार होने से पहले लोगों को बताते हैं कि लोगों देखो तुम पे ये वक्त आने वाला। लेकिन लोग अमूमन इन बातों को नहीं समझते, उनको पसंद नहीं आती ये बात है, इसलिए इसको मानना नहीं चाहते। इसीलिए अगली आयत में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि मैंने तो ये बात बता दी। अब आयत 30 में देखिएगा, वमन यफअल ज़ालिका, और जो कोई भी ये करेगा, क्या करेगा, ये जो बात ऊपर हुई है, ला तक्तुलू अनफुसकुम भी करेगा, या ला फिर माले लोगों का माले ना खाएगा, उद्वानम व ज़ुल्मा, जुल्म और ज्यादती के साथ, यानी दूसरों का मान बातिल, दूसरों का मान या उनकी जान बातिल, जान उनकी ज्यादती के साथ ले लेगा, फसौफ नुस्लीही नारा, तो हम जल्द ही इसको आग में झोंक देंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये अल्लाह ताला पर बहुत आसान है। यहाँ फिर एक बात समझ लीजिए कि सारी दुनिया के लोगों को जहन्नुम में झोंक देना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। कुछ लोगों ने एक फलसफे के साथ बात पेश की, कहते ये कैसे मुमकिन है कि इतने लोगों को लाग में डाल दें, बल्कि लोग तो बड़े नाम लेने के कहते हैं। एक महफिल थी तो वहां कुछ सिस्टर्स थी, और मतलब उर्दू स्पीकिंग सिस्टर्स थी, तो एक सिस्टर जो माशाल्लाह काफी आप कह सकते हैं कि उम्र के एतबार से 50-60 के करीब डिसेंट औरत थी, तो नाम ले रही थी, मैं अब उनकी बात दोहराऊंगी तो शायद आप मेरी तरफ ना मंसूब कर दे, बड़े मारूफ इंडियन लोग हैं, कुछ अदाकार कह लीजिए या कुछ उनके सियासतदान या जिन्होंने बड़ी दुनिया के हिसाब से खिदमत की, तो नाम ले रही थी। अरे भाई आप कहती हैं अल्लाह उसको आग में डालेगा, ना आपका ख्याल है क्या वो आग में जाएंगे, वो देखो अपने मुल्क के लिए इतना करके, क्या आप कहती हैं, आपस में कुछ कर रहे थे। तो मैं दिल में सोच रही थी कि कौन कहता है, आप और मैं क्यों कह रहे हैं, जिसका मामला जिसके बंदे वो खुद कह रहे हैं, राइट? तो बस दफा लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह के लिए लोगों को आग में डालना बहुत मुश्किल है। देखिए मैं आपको इस तरह समझाऊंगी कि बस दफा हम पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, हो सकता है एक उस्ताद है, वो किसी एक स्टूडेंट को गलत काम करने पर सजा देने का इरादा करता है, फिर वो देखता है ये तो आधी क्लास ने ये नहीं किया, तो कहता सबको क्या सजा दो, जरा सा देखते हैं कि बच्चे में सरकशी आ रही है, रिबेलियस हो रहा है, या आगे से तुर्की पर तुर्की जवाब दे रहा है, तो आप क्या करती हैं? अब इसको छोड़ दो, बाद में बात करो। हम कमजोर है, खुलीकल इंसान हो दरीबा, हम लोगों को छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह कमजोर नहीं है। उसका नाम अल कबी, वो ताकतवर है, अल जब्बार, मनवा के रहता है। उसकी जात इतनी बड़ी है कि सारे लोग भी इस तरह के गलत काम कर दें तो उसको नहीं लाएगा। अभी से अगली दो आयतें बहुत अहम है, जो भी मैं थोड़ा सा आपको पहले उसका खुलासा दे देती हूँ कि बार दफा लोगों को जब कहा जाता है कि गुनाह ना करो तो कहते हैं कि कौन से गुनाह, छोटे गुनाह के बड़े गुनाह, एक है कबीरा गुनाह और एक है सगीरा गुनाह। चले आयत को साथ लेके तो फिर इस पर बात करते हैं, और इससे इंशाल्लाह ताला हमारे जहनों में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम कोई छोटा लेते हैं। आयत 31, इन तज तनिगु कबा इरमा तुन हो, यहाँ पे एक छोटी सी छोटा सा कॉमा लगा लीजिए, अगर तुम इज्तनाब करोगे उन बड़े बड़े गुनाहों से जिससे तुम्हें रोका गया। ये बात है, ठीक है। इन अगर तज तने को कर रूप क्या होगा, सब मिलके बोले, जुनाबत, वही है ना, अलग करना। उर्दू में हम कहते हैं कि मैं इससे इज्तनाब करता हूँ, यानी किसी चीज की शिद्दत से घबराते हुए इंसान उससे बिल्कुल पीछे हो जाए, जिसको आप कहते हैं कि मैं इससे बिल्कुल एक तरफ हो गया। और कबायर कबीरा तुम की जमा है, कबीरा गुनाहों से तुम इवॉइड करोगे, उनको छोड़ दोगे, कौन से, मा तुम हो ना अनहो, जो रोकेगे वो तुम उनसे। अब देखिए एक है लफ्ज जनहा, पीछे पढ़ चुके, एक है तन, यहाँ के तुनहा मजहूल है, पैसिव वॉइस है, से तुम रोके गए हो, अगर तुम उनसे रुक जाओ तो नौका फिरन कुम सजियाती को, इसके नीचे ए लिख लीजिए, पहला बदला तुम्हें क्या देंगे कि हम तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देंगे, अभी इसकी हम बात बाद में करेंगे। दूसरा अजर क्या मिलेगा, वनुदखिलकुम, और हम दाखिल करेंगे तुमको, मुदखलन करीमा, इज्जत की जगह पे दाखिल करना। अल्लाह सुभान व तआला इस आयत में बड़े प्यार से कहते हैं कि देखो हम कोई तंग नजर नहीं है, छोटे दिल के लोगों में से नहीं है, हम ऐसे लोगों में से नहीं है कि जो छोटी छोटी बातों पर अपने बंदों को सजा दे। अगर तुम्हारा नाम अमाल बड़े बड़े जराइम से खाली हो तो हम छोटी छोटी खताओं को नजरअंदाज कर देंगे, बल्कि हम तो तुम पर कोई मुकदमा भी दायर नहीं करेंगे। हाँ जब तुम बड़े बड़े जुर्मा आएगा तो फिर तुम्हारी छोटी छोटी बातें भी इसी में आ जाएंगी, बात समझे। देखिए मैं आपको पहले दुनियादारी के हिसाब से समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आज बहुत अहम है, बहुत सारे लोगों ने गुनाहों को खेल समझा हुआ और वो कहते हैं क्या है, छोटी सी बात है, क्या छोटा और क्या बड़ा। देखिए छोटा और बड़ा गुनाह क्या होता है, अगर आप मेरे से इसका ठेठ मतलब पूछ ले तो मैं आपसे कहूंगी कि कोई गुनाह भी छोटा नहीं होता, क्योंकि वो बहुत बड़ी जात की नाफरमानी होती है। अल अली, अल कबीर, अल मुतकब्बिर, अल मालिक की नाफरमानी छोटी भी बड़ी है। मैं आपको छोटी सी मिसाल आपके और बच्चे के तसव्वुर से दे देती हूँ। आप बच्चे से कहते हैं कि बेटा किचन से मुझे पानी ला दो, बच्चा क्या कहता है, मैं नहीं लाता। आपको गुस्सा आएगा, आप बाद में कि बेटा आपको मैंने पानी लाने को कहा और आप नहीं माने, नॉट अ बिग डील, आपने पानी तो कहा था, इस फ्री बहुत इजी टैप से लाना था, मैंने तो आपकी छोटी सी बात नहीं मानी ना। आपको ये जवाब कैसा लगेगा, आप कहेंगे बेटा पानी बात बड़ी नहीं है, कह कौन रहता, मैं कह रही थी ना, तुमने मेरी नहीं मानी। इसी तरह बस दफा लोग ये सोच लेते हैं कि हम छोटे बड़े कामों में फर्क करके शायद बच जाएंगे, ठीक है। ये जो छोटा और बड़ा काम है ना, मेरी अपनी समझ में गलत भी हो सकती है, मैं अपनी बात को कभी भी खत्म ही नहीं करती, मुझे ऐसे समझ आता है कि किसी गुनाह का छोटा होना या किसी गुनाह का बड़ा होना ये अल्लाह का रहम है हम पे, दैट्स इट। चलो कोई बात नहीं, हमारी फितरत की रियायत करके कुछ गुनाहों को छोटा कह दिया, वरना अपनी असल के एतबार से हर गुनाह बड़ा होता, हर गुनाह बड़ा होता, के मुख्तलिफ दर्जे है ना। बस आप देखिए कि सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह को तो मैंने सबसे पहला एथियसम, दहरियत, मैं नहीं मानता कोई है, खुद ही बन गया, उससे नीचे आ जाइए, सेकंड दर्जे पे गुनाह आएगा शिर्क। चलो मैं तुझे तो मानती हूँ, साथ दूसरे को भी मानना है शिर्क। अब जरा आप ऐसे तरतीब से लिखे और फिर हर एक आगे देखिए कि आज इंसानों में कितने लोग इस चीज का शिकार हो गए। तीसरे दर्जे पे जो गुनाह आता है ना, वो क्या है, फराइज का तर्क करना, फर्ज नहीं करते पूरे, मतलब नमाज फर्ज से नहीं पढ़ते, रोजा फर्ज से नहीं रखते, ज़कात फर्ज से नहीं देते, और इसी तरह की बातें, ऊपर बात में जो जिम्मेदारियां उसको पूरा नहीं करता। इसी के साथ बी पार्ट इसी का कर लीजिए कि हराम चीजों का इंतकाम, फराइज को छोड़ देना और हराम को कर लेना, ये कब आएगा, ठीक है। अब आप इस स्टेप को लेके जरा सारे पे आइए, तो इसके बाद फिर उस अगला दर्जा में कहते हैं खता, खता पीछे पढ़ चुके हैं, खती अतुहू के लफ्ज में अहातत बिही खती अतुहू। खता क्या है, मिस्टेक्स, कदम रखना, इधर तक थोड़ा सा इधर पड़ गया। अब आप सोचिए कि जब एक बंदा अल्लाह को भी मानता है, शिर्क भी नहीं करता, फराइज भी पूरे करता है, हराम काम भी उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन याद रखिए कि वो बशर है, कोताहियां तो होंगी। अब जो कोताहियां होंगी, मसलन कमी बेशी होगी, नमाज पढ़ी लेकिन ध्यान बीच में ही चला गया, नमाज पढ़ी लंबी सूरत नहीं पढ़ी, छोटी पढ़ ली, हो गया। अपने सारे मामला दुरुस्त रखे, बीवी होने के नाते, शोहर होने के, बच्चे बीवी, जो भी मामला होते, ना चाहते हुए कमी बेशी होगी, हर इंसान कमजोर है, शोहर को खुश रखा लेकिन किसी बात में मुश्किल हो गई, बहुत अच्छे ने रिश्तेदारों से किसी वक्त में कोई बात हो गई, कोई छोटी मोटी कोई बात, और जो ही पता चल गया कि मैंने की, फिर वो तौबा कर लेते हैं जल्दी से। तो जो बंदा आमतौर पर बड़ी बड़ी चीजों से बचता है, फराइज की कोशिश करता है, लेकिन इंसान होने के नाते अगर उससे कुछ चीजें हो भी जाती हैं, एहसास होती है, उसको छोड़ देता है, तो अल्लाह सुभान तआला उसको माफ कर देते हैं। छोटी छोटी चीजें बंदे की नजरों में नहीं आती। मैंने किसी से एक मौके पर ऐसे सवाल किया टैक्स के बारे में, और गबन और इस तरह की कोई बात किसी की चल रही थी, तो मैंने कहा कि कितनी को इंटेलिजेंसी होती है इस मुल्क में, जैसे अमेरिका की ये बात है, किसी के साथ कोई भी बात हो रही थी, तो पाकिस्तान में तो हमने मारूफ सुना हुआ है कि जी लोग टैक्स चोरी करते हैं या अनफेयर मीन्स होते हैं कहीं, तो क्या इस मुल्क में भी ऐसे होते हैं, कितना इनका कंप्यूटराइज निजाम है। तो उन्होंने मुझे जो बात समझाई वो बताई इस तरह से कि जो लोग छोटी छोटी हेरा फेरियां करते हैं ना, चंद सौ कुछ ले लिया, कुछ दे दिया, किसी पे टैक्स लिख दिया, पर्ची बनाई ना बनाई, कहते को नहीं पकड़ी जाती। लेकिन अगर ये लेवल बढ़ जाए, $10,000 का कोई मामला आ गया, 20 आ गया, आपके बैंक में $1,00,000 पड़ा हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैंने तो सब कुछ कमाया ही नहीं, तो फिर जब वो इंक्वायरी करते हैं ना, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर वो डेली स्लिप्स निकाल के देखते हैं, ये है तज तने नुकम सही आती को। अल्लाह आमतौर पर बंदे की छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ता। मैं कहती हूँ मेरा रब इतना मेहरबान है कि अगर हम सब उसकी मेहरबानी की सिफत का अशरे अशीर भी ले लेना, तो हम हर दिल अजीज हो जाए। अल्लाह मीन नहीं है ना उस बिल्ला, अल्लाह नुकता चीन भी नहीं है, तनकीद भी नहीं करता, बल्कि आम तौर पे तो इंसान के गुनाह माफ करता। आपको आयत की तफसीर याद आई जो हमने की थी, करता ऐसे ही झड़ते हैं जैसे जिस्म से बाल झड़ते रहते हैं ना, कभी स्किन झड़ जाती है, मौसम बदलता है तो स्किन से छाल उतर जाती है, हमें सांस नहीं, पलकें गिरती हैं फिर उठ जाती हैं, बाल उतरते हैं फिर नए आते हैं, इसी तरह दिन रात हमारे गुनाह झड़ते ही रहते हैं। इस जनरल फिनोमिनन, इंसान गुनाहों से नहीं बचेगा, सरकशी नहीं होनी चाहिए, रिबेलियस ना हो। फिर आप देखिए दूसरे दर्जे पे जब इंसान की करता है, हदीस में आता है कि जब एक इंसान वजू करता है, अच्छी तरह वजू करता है, फिर कुली करता है और नाक में पानी डालता है, तो इसके मुंह और नाक से इसके गुनाह यूं निकल जाते हैं, फिर वो चेहरा धोता है तो चेहरे के गुनाह सारे पानी के साथ चलते हैं उसकी आंखों के, बल्कि हदीस में आता है कि उसकी पलकों के गुनाह भी झड़ते हैं। या अगर इंशाल्लाह नमाज नबी का आप की कोर्स में नहीं, हम इसमें नमाज की पढ़ते हैं उससे अगले, और आप चाहें तो वेबसाइट पे उस रिकॉर्डिंग मौजूद है, जाके सुने। इतना प्यार आता है उस हदीस को पढ़ते, वैसे लगता है कि हर चीज हमारी उतर रही है, पलकों के गुना, फिर इसी तरह हाथ होता है तो हाथों के गुना, बल्कि फरमाया कि हाथों के नाखूनों के नीचे से गुना भी झल जाते हैं, फिर जब वो सर का मसा करता है तो इसके सर और कानों के गुना जो है वो झल जाते हैं, फिर पांव होता है तो पांव के गुना झड़ जाते हैं, यहां तक इसके पांव के नाखूनों के नीचे से भी गुना झड़ जाते हैं, फिर जब वो चल के मस्जिद की तरफ जाता है तो उसकी नमाज उसकी नेकियों में इजाफे का जरिया बनती है। आप देखिए अल्लाह बहुत नाइस है। आप में से कोई अल्लाह के बारे में बुरा ना सोचे, लेकिन बहुत, वरना बहुत बुरा लगेगा। आप अपनी माँ के बारे में कहती हैं मेरी माँ बहुत हर बात पे टोकती है, लेकिन कभी अपनी माँ के बारे में बुरा ना सोचे, वो आपकी दुश्मन नहीं है। यही चीज आप हर अंदाज में देखें। तरबियत की अंदाजी बड़ी नहीं करते। हमारा मसला क्या कि हमें तक आज तक हाथ ही नहीं लगे, हम भी शेप हुए हैं, हमारा फिगर खराब हुआ है। ज़ाहिरी फिगर तो बहुत अच्छे है चमकते हुए, लेकिन अखलाकी जिस्म जो है वो खराब हुआ है। तो अल्लाह सुभान व तआला छोटे गुनाहों को नेकियों के असर से माफ कर देते हैं। सूरत हूद की आयत 114 में भी आप पढ़ेंगे इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत, कि बेशक नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ठीक है, तो बुराइयों से मुराद कबायर नहीं है, सगायर। तो पहली बात समझे कि अनकॉन्शियसली गुनाह किए, अनकॉन्शियसली माफ हो गए। इसके लिए इसके बाद अगली कैटेगरी जिसका यहां तस्करा कबायर, इसके ऊपर थोड़ी सी बात सुन लीजिए। और वो क्या है कि कबायर कबीरा में से, कबीरा की जमा, ठीक है, कबर और शर्क, ठीक है। इसी सूरत की आयत 48 और 116 में दो बार ये बात आती है कि शिर्क अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह ये नहीं कभी माफ करेगा कि उसके साथ शिर्क किया जाए, फिर इसके अलावा जो माफ कर दे, लेकिन किसके लिए, लिमैयशा, जिसके लिए चाहे जिसके लिए ना चाहे। तो गोया के आज ये हुआ कि हमारे तसव्वुर में, अब यहां समझिए कि हमारे पास इस वक्त जो दीन का वर्जन आम है ना, वो परवर्टेड है। परवर्टेड को उर्दू में क्या कहेंगे, मसख शुदा। एक ऐसा मजहबी वजूद लोगों का बन चुका है, एक मिजाज बन चुका है कि कबायर हो रहे, सूद हो रही है, शराम हो रही, छोटी छोटी बातों पे झगड़े, हत्ता के दाढ़ी लंबी है के छोटी है, चलवार कहां रखनी कहां नहीं करनी, लेकिन बड़ी चीजों को छोड़ के छोटी पे आते हैं। मिसाल है, एक बच्ची थी तो मेरे पास आई एक मौके पे, यंग बच्ची थी, कुरान क्लास में थी, कहने लगी कि मेरे फादर जो स्मोकिंग करते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है, तो मैं उनको कहती हूँ तो वो गुस्सा करते हैं, लाइक दिस। अब वो बच्ची थी, जिस तरह उसने समझा उसने मुझे बताई बात, मैंने उसे कहा कि बेटा मुझे ये बताइए कि क्या आपके अब्बू नमाज पढ़ते हैं, कहती नहीं कभी कभी। मैंने जो बातें उनसे पूछी वो सब में बस यही था हिंकी पेंकी। तो मैंने कहा बेटा कल से आपने उनको सिगरेट से बिल्कुल नहीं रोकना, बिल फर्ज वो आपके कहने पे सिगरेट छोड़ भी देते हैं। देखिए तबलीग का बहुत बुनियादी नुकता है, ऊपर से नहीं नीचे से शुरू करते हैं। अब एक बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता, अब देखिए इससे गलत ना समझिएगा, मुझे डर लगता है कि आप मेरी बात को गलत समझ कर रिलैक्सेशन ना फील करते हैं कि आप जो कोई कर रहा है उसको करने दो, नहीं। अगर मिसाल है कि आपके भी करीब ऐसे ही मामले, डोंट टच द स्मॉल थिंग, सिर्फ पकड़ रूप को, उसको नमाज क्यों नहीं पढ़ता। आमतौर पर जब आप दूसरों के साथ बातें करते हैं ना, तो आपको कभी मौजूद पे बात नहीं करनी चाहिए। मेरी नजर में जो मुझे समझ आता है, जो सुन्नत तरीका मैंने देखा पढ़ के, वो यही तरीका है जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि अली मोहम्मद किताब बाबा युजक की है और किताब पढ़ना सिखाना उसका तस्किया। क्या आप वास्ता तो पहले अल्लाह अपने कद के बराबर था, तू भी बड़ा मैं भी बड़ी, चलो अब आप चलो 4 इंच अल्लाह का हक को बड़ा होता दिख रहा है, 30-12 तक होगा ना बड़ा, तो अपने बच्चों के साथ अपने घर वालों के साथ इस तरह की तबलीग मत करें कि वो मिसाल है कि कैंसर का मरीज है तो आप उसका कैंसर छोड़कर, मिसाल है कि आप उस कैंसर का तो इलाज अभी नहीं उसका कर रहे लेकिन आप उसके घुटने में दर्द का इलाज शुरू कर दे, हो गया घुटना ठीक, 2-4 महीने में मर जाएगा, कैंसर दूर करें, कबीरा गुना कैंसर है। मैंने पिछले सालों में जब इस आयतों पे बात की तो मुझे याद आ रहा है किसी एक जगह, कई जगह पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह वेब पे 2-3 दफा लेकिन 8-10 दफा डिफरेंट जगहों पे पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने एक दफा इसको कैंसर के साथ रिलेट किया था कि छोटा गुस्सा दिमाग खराब होता है सेल का, 1 सेल से कैंसर शुरू होता है अगर आपने थोड़ी सी उसकी जानी, और रमजान का तो याद ही होगा आपको, सूरह फुरकान में आपको दिखाया था, फिर दिखा देंगे इंशाल्लाह कि कैंसर सिर्फ एक ब्रेन एक सेल के अंदर, जो उसका ब्रेन है ना उसके अंदर थोड़ा सा खलल आ जाता है तो वो डिफॉर्म होता है, शुरू में पता ही नहीं चलता, इसीलिए कैंसर का पता ही एंड पे चलता है, और ऐसा ऐसा जब आप उसको केयर नहीं करते तो वो थोड़ा और बड़ा होता है, फिर 2 होता है, फिर इधर होते होते आखिर वो इर्द गिर्द के सेल जो होते हैं ना उनका खून लेता जाता है, तो वो सेल मोटा गुठली की सूरत में या टीता और उसका हाथ कमजोर होता जाएगा, और होते होते फिर आपका हाथ से होते पूरे जिस्म से वो खून निचोड़ के वो गुठली बड़ी हो जाएगी, बाकी खत्म है। दिस इज कबीरा गुनाह। आप और मैं अगर गुनाहों की इस तरतीब को समझ गए हमारी तबलीग इंशाल्लाह बहुत मौसर हो जाएगी। डोंट टच द पीपल, देखिए जख्म से हाथ लगाए, ये जो लोग खोल जाते हैं ना हमारी किसी बात पे, आप उनके भले के लिए बात कर रहे हैं, नमाज पढ़े आप क्या उस वक्त उनका नुकसान चाह रहे होते हैं, और वो आगे से शौक करके आपको डांट देते हैं फिर आप भी खराब, आप वो भी आपसे नाराज है, आपने उनकी दुखती रग को पकड़ा, हालांकि तबलीग के अंदर एक बेहतरीन डॉक्टर की तरह आप रूट कॉज को पकड़े। आज देखिए कि डॉक्टरी के कई तरीके है ना, होम्योपैथी है, एलोपैथी है, कहीं आप उसकी सर्जरी भी करते, सर्जरी कब करता है कोई, लास्ट थिंग काट के इस जिस्म के हिस्से को फेंक दो, सबसे पहले कोशिश किया जाता है दवाइयों से, बगैर परहेज से इलाज होता है, परहेज कराइए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो परहेज ना करवाई गई तो नमाजे पढ़ी भी पढ़ना पड़ी बेकार हो जाएंगी, मामूलात ठीक कराएं, रात को सोना जागना ठीक कराएं, नजरों को झुकवाएं, तस्किया करें, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास कराएं, जब रात को वक्त पे सोएंगे तो सुबह वक्त पे उठेंगे, लेकिन अपनी सुबह को आगाज लड़ाई के साथ, इसलिए छोटा गुना बार बार करते जाएंगे तो वो बड़ा बनता जाएगा। देखिए मैंने ये जुमला कई दफा बड़ा बोला हुआ है, आज तो मैं सिर्फ अपनी मेमोरी से बोल रही हूँ लेकिन पहले तो मैं अपने नोट्स में से देख के बोलती हूँ कि छोटा गुना बार बार करेंगे तो बड़ा गुना बन जाएगा, बड़े गुना को बार बार करते जाएंगे तो कुफर बन जाएगा, सिंपल सी बात है। आपके सामने आपकी मासी से एक प्लेट टूट गई, टूट गई, ये इसकी मिस्टेक है, पहले आप सोचे कि आपने गलत जगह पे तो नहीं रखी थी, कोई बात नहीं माफी मांग लेगी आइंदा ठीक हो जाएगी, नहीं टूटेगी, लेकिन एक प्लेट टूटी फिर दूसरी प्लेट टूटी फिर तीसरी, तो आपको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और जिसको आदत हो जाएगी अपनी मासी, जिसको आदत हो जाएगी अपनी मालकन को गुस्सा दिलाने की, बिल आखिर फिर क्या होगा, वो एक दिन आके उसके ऊपर हमला भी कर देगी, तो गुनाह को छोटा ना समझे। एक सेल से जब कैंसर बन सकता है तो मरान हमें दरगुजर और तरीका तदरीस सिखाता है कि तुम अपने आप को भी और दूसरों को भी गुनाहगार ना करो, बहुत सफल लोग खुद गुनाहगार होने से बचते हुए दूसरे को गुनाहगार कर देते हैं, जो तरीका आपका होता है ना दूसरों को गुनाहों से रोकने का, वल्लाह की बात दफा वो दूसरे को और गुनाहगार कर देते हैं। आपको पता ना कि मेरा बच्चा इस वक्त ये जवान बच्चा ये बोलेगा मेरे आगे इस बात पे, एक तो देखिए मैं फिर आपको माजरत करूंगी कि मैं आपको रिलैक्सेशन नहीं दे रही कि आप जाके सो जाए, नहीं पढ़ते नमाजें ना पढ़े, लेकिन मिसाल है आपका जवान बच्चा नमाज के वक्त में बिस्तर पे सोया हुआ, गुनाह बहुत बड़ा कबीरा अकबर गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, आप जिस तरीके से उसको डांट के बुला रही हैं उसके बाद वो एक और गुजर करेगा और वो क्या कि माँ क्या आगे बोलेगा, बदतमीजी करेगा, फिर हो सकता है उसको उसमें उसके मुंह से कुफरिया जुमला निकल जाए, मैं नहीं पढ़ता, कुछ नहीं होता इन नमाजों से। अकलमंद मुबल्लिग और हर माँ एक मुबल्लिग है या मुबल्लिग, हर बीवी एक मुबल्लिग और मुबल्लिग है, पहले आप जाकर उसका मिजाज देखें। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो ऐसी दवा दे देता है, नहीं, आप देखिए जितने अच्छे डॉक्टर हैं वो पहले आपका टेस्ट लेते हैं, मिजाज कैसा है, गर्म मिजाज है, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं, आपको शुगर तो नहीं। बार दफा यहाँ पैच टेस्ट लिया जाता है कि ये दवाई खाएंगे तो कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, एलर्जी तो नहीं, 100 किस्म की चीजें करके वो आपको गोली देते हैं ताकि आपको सेहत मिले। इस 5-6 फुट के जिस्म को सेहत देने वाला इतना अकलमंद है, और इंसान की रूह को अजाब से और जहन्नम से बचाने वाला इतना ना समझो कि वो अपनी मर्जी से काम करता है। ये एक बड़ा खूबसूरत रिवर्स सेक्शन भी है। आप तज तने को कबाई रमा तुम हाउन से बचते जाएंगे ना कबीरा से, तो आहिस्ता आहिस्ता सगीरा भी कम होते जाएंगे। मैं आपको एक आखिरी मिसाल देके आगे लेके चलती हूँ। आपका घर है, जिस दिन आपका घर बिल्कुल आपने बाय किया या ब्रांड न्यू घर में आप दाखिल हुए, या आपकी मासी क्लीन करके गई या फर्स्ट क्लास जो भी था, क्या फीलिंग आती है घर में जाके? वाह, सूडी खुशबू भी आती है, चीजें भी ऑर्गेनाइज्ड है, मट्टी भी नहीं, बार बार बंदा कमरे खोल खोल के देखता है कि सब ठीक है, हर चीज अपनी जगह पर अच्छी लगती है। आप उस दिन फिर बच्चों को क्या कहते हैं? आज ही सफाई हुई है, डरना डरना शोहर घर में ठहरे 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 पाँव सर पे रख लें क्योंकि नीचे परेशान है, वो परेशान हो जाते हैं, ये मैं तो सर के बल आना चाहता था, पाँव के बल क्यों आ गया बेगम के पास, अब क्या हुआ? एक दिन दो दिन के वो आप भी घर नहीं डालते, सच्ची बात है, फिर हम भी जहां से चीज उठाते हैं वहीं क्योंकि घर साफ हुआ। एक दफा दो तीन दिन गुजरने के बाद जरा गंद पड़ना शुरू हो जाए फिर क्या होता है? कहते डाल लो जितना डाल, अब एक ही दफा साफ करेंगे बस। एक दफा गुनाहों की लत पड़ जाए ना बंदे को तो गंदा रहने को मिल जाता है, फिर नशा। आप देखिए ड्राउजीनेस होती है, नहीं नहीं ना मुसत, जो लोग नहाते धोते नहीं है उनका हर वक्त दिल करता है बिस्तर में घुसे रहे सुस्ती के मारे में। आप सुबह उठे फजर से पहले या फजर के बाद, अल्लाह को तौफीक दे, आप शावर ले लें, क्विक शावर ले लें, साफ सुथरे सीधे सादे कपड़े पहन ले, आप देखिएगा आपका बिस्तर में जाने को दिल ही नहीं करेगा। आप खाना भी खाएंगे, आप सुबह अगर आपको नींद आती है कुछ अपना इलाज कर ले, सुबह उठते ही तैयार हो जाए, नींद तोड़ गई, कपड़े साफ पहन के जब आप खाना खा रहे हैं तो आप केयरफुल होंगे। और वरना जो खवातीन काम करती हैं घर में, आप देखिए एक दफा काम शुरू कर ले किचन की सफाई का तो जो फिर गंद पड़ता है कहते हैं डाल दो, कपड़े गंदे हो जाए बाद में धोने ही है। तो गुनाहों की भी एक भूख होती है, सिर्फ उसको आती है जो तज तने को कबाए और इस्मत है। वरना बड़े बड़े गुनाह करके लोग हजम करके आ रहे, आप देखिए जो शराब के नशे में धुलता है, कोई शराब मजे की चीज है? तसव्वुर से भी इंसान को घिन आती है, लेकिन वो क्यों पीता है? क्योंकि इज्तिनाब खत्म हो गया। तो अल्लाह ताला कहता है वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, हम तुम्हें दाखिल करेंगे बहुत इज्जत वाली जगह में। आप देखिए कि ये भी बड़ा खूबसूरत होता है, हम तुम्हें बाइज्जत कर देंगे, क्यों? क्योंकि दुनिया में इंसान को गुनाह रुसवा करते हैं, कोई चोरों को पसंद नहीं करता, डाकुओं की कोई इज्जत नहीं होती, लोग दुनिया में लुटेरों को और शराबियों को पसंद नहीं करते, जिसको आप कहते हैं तो ही होती है, जिधर ऐसा बंदा जाता है मारपीट खा खू के आता है और उसको कुछ नहीं पसंद करता। अल्लाह कहते हैं तुम गुनाहों से पाक हो जाओ और उसके बाद देखना तुम्हें इज्जत कितनी मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी मिलेगी। और ये बात आप इंशाल्लाह सूरत शूरा और सूरत नजम में भी बचने का मशवरा देते हैं। चंद बातें सिर्फ जो मेरे और आपके बहुत ही फायदे की हैं, तो कबीरा और सगीरा के मामलात में इसको देख लीजिए ताकि ये मजमून आज समझ आ जाए और अगली दफा ये बात आने से पहले हम अपने आप को दुरुस्त कर लें। तो पहली बात देखिए कि जो मैंने आपको साथ जिक्र किया कि जब किसी को ना कोई चेक करे तो नहीं चेक किया, गुजर गए ना, फिर मिसाल याद आ गई है। देखो आप एयरपोर्ट पर गए, आपके सामान में हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो प्रोहिबिटेड हो, या हो सकता है कि आपका सामान थोड़ा सा ऊपर नीचे हो वजन में। अगर काउंटर में बैठा हुआ शख्स जाने दो न कब फिर हम तुमसे ही आते कुम वाला मामला कर दे चले जाओ, तो आपका पैकेज नहीं खुलता, दैट्स इट, सीधे निकल जाएंगे। एक किलो दो किलो वजन भाई जाने दो, हैंड बैग है वो कहेंगे ये 7 किलो का ही खुल जाए, कभी स्कैनर्स में आ जाते कहते चेक कराओ, फिर वो कैसे करते इंस्पेक्शन? हमारे हमेशा हाथ वाले बैग की होती है, क्यों? अगर कभी हो, क्योंकि इसमें तारे, इसमें ये वाले इसकी बहुत हो जाती है, ये इसका पीस है ना लोहे का, तो मेटल जितना ज्यादा होगा उतनी होती है, तो तारे होती है। फिर वो इच्चर पिक्चर खोल के देखते हैं, इसको भी खोलेंगे देखेंगे मेरी तारे हैं, वो चेक करते हैं ये है वो, क्योंकि अब एक दफा खुल चुक गया तब उन्होंने भी तो रिपोर्ट देनी है कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। फिर कहीं वो स्पिरिट वाले कपड़ों के साथ चेक करते हैं, यही बात है। दुआ कीजिए कि हमारा पटारा ना खुले, जिसका हिसाब खुल गया ना उसकी फिर छोटी छोटी बातें भी खुलती जाएंगी। और जिसको कहा गो एट तो आप अंदर बोर्डिंग पास लेके मुस्कुराते हुए हंसते हैं, कहते हैं निकल गया सब कुछ, वो भी ना ले आते जो छोड़ा थे, फिर भी हम शुक्र नहीं करते, वो भी हम शुक्र नहीं करते। ए, बड़ा मजे की बात हुई, हम सफर में थे किसी जगह, तो मोस्टली सबको पता है जो वेट की लिमिट होती है उससे अराउंड ही होता है एक आधा किलो, बड़ी मुश्किल से एक में से निकाल निकल के दूसरे में करके तो रखा। तो जब ये ड्रॉप करके आए तो मैंने इनसे पूछा कि कितना था वेट उधर, कहते वेट तो उसने किया ही नहीं, टैग दे के फटाफट दे दिया। तो मैं कहा हमने क्यों निकाला, वो भी डाल देते। यानी इंसान ऐसा है कि वो कभी कभी भी खुश नहीं होता। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह सुबहान तआला हमारे पर्दों को रख ले, ठीक है। फिर कुछ चीजें अल्लाह की हक तलफी हो या बंदों की, माँ बाप की, इंसानों की या खुद अपने नफ्स की, जिसका जितना हक ज्यादा ना हम पे उसकी हक तलफी उतना बड़ा गुना बन जाएगा। इसी को जुल्म कहा गया, जुल्मन कबीरा कुछ कहा गया, शिर्क का इन शिर्क जुल्म बहुत बड़ा गुना। आप और मैं हर एक अपने मामले सीधे रखें, यकीन करें कि ये कुरान बंदे को तोड़ के रख देता है। सारी दुनिया आपकी तारीफें करती फिर आप कहते हैं इनको क्या पता, मैंने अपना फुला रिश्तेदार का हक नहीं दिया हुआ, मैंने उस मामले में कमी की, मैंने अल्लाह का हक कई जगह मारा हुआ है। तो लफ्ज हक तलफी को अपना कोडवर्ड बना दे, दिन रात खुद से पूछे आज किसी की हक तलफी तो नहीं थी, अल्लाह की, माँ बाप की, इंसानों की, शौहर की, बीवी की। और यही चीज इंसान को अपना मुहासबा करने पे माइल करती है। दूसरी चीज अल्लाह से बेखौफी, यानी अल्लाह से बेखौफ होना बंदे के गुनाहों को बड़ा कर देता है। जितना अल्लाह से बेखौफ होगा ना कोई, उतना उसके अंदर तकब्बुर होगा। इस इस्तिकबार लिख लें कि मसलन अल्लाह कहता है ये ना करो, कर लिया। यानी जिस बात के करने से अल्लाह ने मना किया जान के उसको करना गुनाह को बड़ा बना देगा, और जिस चीज से अल्लाह ने रोका उसे ना रुकना बड़ा बना देगा, क्योंकि आपने अल्लाह से बेखौफी महसूस की। नाफरमानी जिस कदर ज्यादा ढिटाई और जुर्रत के साथ की जाएगी ना उतनी बड़ी होगी, और गुनाह की शिद्दत बढ़ती जाएगी, हत्ता कि उस गुनाह को फिस्क और मासियत कहते। तीसरी चीज जो बहुत अहम है, ताल्लुकात का तोड़ना, उन रातों को और ताल्लुकात को तोड़ना जिस पे इंसानियत का क़याम मुनहसर है। अल्लाह का बंदे से रब्ता टूटा तो किबर तो गुना बढ़ जाएगा, और बंदे का बंदे के साथ टूटा, और इस तरह की बातें आप देखिए कि बस दफा इंसान जिंदगी भर किसी को पूछता भी नहीं है। आप में से कुछ लोग ब्रेक में आए थे तो मैं थोड़ी सी शेयरिंग भी कर दूं। आप लोगों को पता चला आज के मेरे ससुर की डेथ हुई ना, आप लोगों को ये पता चला कि ये आज हुई है, लेकिन वो कल मेरे क्लास में आने से पहले की बात है। कल आप में से किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ होगा, बिल्कुल वैसे आज तो थोड़ी सी और रीजन की वजह से क्लास का स्केड्यूल बदला ना, लेकिन परसों सडनली हमें अचानक पता चला कि हमारे मेरे हस्बैंड जो उनके वालिद की डेथ हुई, इतनी सडन इतनी अचानक। और जो भी आपको पता है कि इंसान होने के नाते परदेश में फीलिंग्स होती हैं, और वो मेरे ससुर थे तो आपके आपके ससुर हैं, मेरे लिए ये इतनी बिग डील नहीं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे शौहर के बाप थे और मैं अपने शौहर को दुखी देके दुखी होंगी, इंसान की बात है। खैर दो तीन दिन से जाहिर है उधर उधर बातें, तो जब बातें हुई तो कल रात भी तकरीबन बहुत देर इससे बाद उससे बाद जो भी मैंने अपने हस्बैंड से करते देखा कि जिंदगी भर हो सकता है कि वो इतना केयरिंग ना हो उस चीज में, लेकिन वो बहुत ज्यादा दुखी और रो धो रहे थे जो भी थे। तो मैंने फोन बंद हुआ था अपने शौहर से कहा कि जब भी चला जाता है तो लोग उसको कितना याद करते हैं, तो मुझे कहने लगे नहीं उसको याद नहीं करते। मैंने कहा क्या करते हैं, कहने लगे कि गिल्ट का शिकार हो जाते हैं कि हम इसके साथ अच्छा कर सकते थे, हमने नहीं किया और अब कर नहीं पा रहे। और इनकी भी आंखों में आंसू थे कि जिंदगी भर हम इस गिल्ट को फील, और जिंदगी भर हम क्या कहते हैं कर लेंगे जब करना होगा। वो खैर है, वो भी तो देखे ना, हम क्यों देखे, वो भी देखे। हर इंसान का कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में आके कहीं ना कहीं कमी बेशी होती है, सगे भाई बहनों में कई मसले होते हैं। तो मैंने उस वक्त ये देखा कि फिर आज मौका है, आज जिंदगी में मौका है कि जो लोग जिंदा हैं उनके मामले में इस दिल का शिकार बाद में ना हो, जो करना उनकी कदर, अब बाप की कदर कर लो, बाप है तो उसकी ना कर लो। कि हकीकत ये है कि हम बस दफा अपने आपको टालते रहते हैं, तोड़ो छोड़ो क्या है। मैं कहती हूँ एक नमाज का मजा नहीं आ सकता अगर आपके दिल में किसी दूसरे बंदे के बारे में कोई गिल्ट और कोई ग्रज। यहां बैठे बैठे अगर आप इस कुरान का लुत्फ लेना चाहते हैं ना, दिल की गहराई से कहें कि जिसके बारे में मेरे दिल में गिल्ट, अल्लाह मैंने उसको माफ किया, और जिसके दिल में मेरे बारे में, अल्लाह तू उसको तौफीक दे कि वो मुझे माफ कर, और आप उसके लिए फिर कदम उठाएं, मैसेज दें, फोन करें, बात करें। ये रस्मी जुमले हमारा कहीं से आते हुए कहते कहा सुना माफ करना, कहते हैं कि नहीं ये ना कहा करें, ये कहा करें जो मैंने गिल्टे तुम्हारी की है वो माफ करो, मैंने जो तुम्हारे हाथ तलफी की वो माफ करो, फिर पता चलेगा आप क्या करें। वो खाया पिया माफ करना ये नहीं बात होती, और माफ करके भी कहते हैं लेकिन मेरी मेरा दिल नहीं करता, जिंदगी अपने बोझ उठा उठा के गुनाहों का फिरते हैं। आज इधर कोई मरता है तो हमें दुनिया का वो बेहतरीन इंसान दिखता है, और उस वक्त जो बात समझ आती है वो अगर उसकी जिंदगी में आ जाए तो आप देखिएगा कि वो रास्ते और ताल्लुकात इतने खूबसूरत हो जाएंगे। मैं कहती हूँ ये कुरान आपके लिए एक नया रास्ता है। अगर आप में से कुछ लोग एक खानदान के आते हैं, मिसाल देती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग माइंड नहीं करेंगे, इसीलिए मिसाल है कि हमारे पास एक खानदान में से जो मेरी नजर में इस वक्त नौरीन आंटी की फैमिली आ रही है, राइट, आपकी दो बहुएं आप हैं, हो सकता है कोई और भी आपका हो, एक पोती आपकी जी माशा आपकी पोती भी इधर। अब आप देखिए कि आप लोगों का जो पिछली 30-25-30-40 जब से ये घर बना है, फैमिली बनी है, जो ताल्लुक है, आज उस सारे ताल्लुक के ऊपर कुरान के ताल्लुक का एक ताल्लुक बना के रखे, और आप इस कोर्स के पूरा होने से पहले गवाही देंगे कि जो अब मुझे अपनी बहुओं से प्यार है, और ये कहीं जो आज अपनी सास से प्यार है, ये आपको कभी भी फिक्र की दावत देता है कि रिश्ते मजबूत करो, वो रहा भी तुम। अगर आपका रिश्ता बंदों से नहीं है ना, तो रब से नहीं होगा, और रब से कमजोर ताल्लुक बंदों से ताल्लुक कमजोर कराता है, ये भी याद रखें। भाई बहन प्यारे होते हैं तभी तो उनके बच्चे प्यारे लगते हैं, राइट, और जिनको अब भाई बहन से प्यार नहीं उनके बच्चों से भी नहीं होगा। तो अल्लाह से प्यार बुनियाद है, असल में कहानी फिर वही खत्म हुई। आज आपके दिल में अल्लाह के लिए प्यार है ना, उसके बंदों के लिए भी होगा। आप सारा दिन इंसानियत की खिदमत करें, उनको फ्री खाने खिलाएं, नमाज के वक्त उठ के आप नमाज ना पढ़े, तो क्या ख्याल है वो खाने कबूल हो जाने चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम गुनाहों में एकदम नहीं जाते। आप देखिए कि ये जो हम इसमें आगे फिर पढ़ने वाले हैं बात, शोहर और बीवी के जो ताल्लुकात की लिमिटेशन है, और बीच में जिना और बदकारी की जितनी बात सूरत में हम पढ़ते जा रहे हैं, निजाम को तबाह करने वाली चीजें ना। जिना को क्यों इतना बुरा कहा, क्योंकि उससे निकाह का रिश्ता खराब होता है, नसब टूटता। तो इसमें कोड वर्ड लिख लें कि तोड़ना नहीं है जोड़ना। हमें ये कुरान दीन भी सिखाता है, और इंशाल्लाह यहां से इस जुबान से जब भी आप कुरान सुनेंगे आपको हमेशा जोड़ने की दावत देंगे। तोड़ना नहीं है, खुद रिलैक्सेशन में करके अपने आप को ठीक कर लो। अल्लाह सुबहाना ताला यही बातें बता के हमें कहता है कि देखो ताल्लुक ना टूटे तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा, तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, तुम्हें इस दुनिया में रहते हुए वो सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए तुम अल्लाह से हर वक्त दुआएं करते हो। अब अगली आयत में दिल साफ करने का एक नुस्खा लिख लें। चाहते हैं ना कि दिल साफ हो, तो क्या वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बादिन, आयत 32। और न तमन्ना करो उसकी जो बुजुर्गी दी अल्लाह ने किसी को दूसरी तरह, कि जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है, तो तुम उसकी तमन्ना ना करो, क्योंकि आज पूरी करते हैं बादुक तुम में से बाज बाजी में से तो है, कौन से फर्क हो, तुम सब इंसान ही तो हो। हाँ लिर रिजाली नसीबुम मिम्मत तसबू, मर्दों के लिए वो हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, यानी मर्द जो जिंदगी में काम कर रहे हैं उसका हिस्सा उनके। वलिन निसाई नसीबुम मिम्मत तसबना, और औरतों का उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने अल्लाह ने जो उन्होंने अपने लिए कमाया। तुम क्या करो, वस अलूली अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, उसका फजल मांगते रहो। अल्लाह ताला हर चीज का रखता है। बहुत खूबसूरत कहा जाए तो इज्तमाई जिंदगी में इंसान को नसीब मिल जाता है, अमन नसीब हो जाता है, सुकून मिल जाता है। इस आयत की खास शान नजूल है जिसको सुनकर बड़ी हैरत होगी आपको, औरतें कैसी थी उस दौर की जो अल्लाह के नबी के पास आकर ऐसी बातें करती थी। हमें मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं जिसका खुलासा क्या है कि औरतों में से कुछ औरतें अल्लाह के नबी के पास आईं, कहने लगी अल्लाह के नबी मर्दों के लिए दुनिया में नेकी कमाने के बहुत सारे चांसेस हैं, 5 वक्त मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ लेते हैं, फिर जंग का मौका आता है तो जाके जिहाद के मैदान में कामयाबियां करते हैं, कभी शहीद हो जाते हैं कभी कुछ। हम औरतों के लिए तो इतने चांसेस ही कोई नहीं, तो क्या दुनिया में नेकियों से ये महरूमी हमें जन्नत में भी दर्जों से महरूम कर देगी। ये देखिए क्वालिटी की बात करती है पास्ट की औरत, नबी के दौर की औरत क्या कहती है कि बस इतना बता दें कि जिस तरह दुनिया में हमारे से ज्यादा मर्दा, फिर जन्नत में भी हम पीछे होंगे। और रिवायत उम्मे सलमा से आती है जो अल्लाह के नबी की बीवी थी, कि कैसी उनकी नजर थी। हम होते तो हम कहते ये क्या बात है, अब तो मर्दों को तो इतना मिलता है औरतों को ये नहीं मिलता, इक्वालिटी ये है। मतलब वो नेकियों में एक दूसरे पे सबका चाहती थी। मुसलमत की रिवायत है, अगर आप जिल 6 में पेज नंबर 322 पे, तो आप जाके पूरी रिवायत पढ़ लीजिए कि उनका सवाल क्या था कि क्या जन्नत में भी हमें कोई कम दर्जा मिलेगा। तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि डोंट वरी, तुम्हें अल्लाह ने जिन चीजों का मुकल्लफ बनाया तुम वो काम करते रहो तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर देगा। लेकिन अगर आप इस आयत पे थोड़ा सा गौर करें ना, तो आपको इसमें एक बड़ा खूबसूरत मैसेज मिलता है जिसको मैंने आज सुबह पिक किया, तो मेरा दिल करा कि आपसे भी शेयर करूं कि वला ततमन्नौ मा फद्दलल्लाह, मुराद है इससे मुराद ये है कि इस दुनिया में मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ चीजें पाते हैं, फितरत के एतबार से सब इंसान बराबर नहीं है, यकसा नहीं है। किसी को खूबसूरती ज्यादा दी तो शक्ल में कमजोर है, किसी की आवाज खूबसूरत है किसी की आवाज भद्दी है कि नहीं, कोई ताकतवर है तो कोई कमजोर है, किसी का जिस्म पूरा सही है तो कोई पैदाइशी तौर पे किसी नक्स का शिकार है, किसी की जिस्मानी जहनी सलाहियत इतनी अच्छी है दूसरे की नहीं, है कि नहीं। इसी तरह कुछ औरतें हैं कुछ मर्द है कि नहीं, कुछ अमेरिका में पैदा किए गए कुछ पाकिस्तान के किसी गांव में पैदा किए गए। सारी दुनिया में ये फर्क क्यों है, पहला ये सवाल है। अल्लाह सबको एक शक्ल का एक रंग का और एक माहौल का बना देता, तो ये बताइए कि दुनिया का काम कैसे चलता। अगर कमजोर लोग ना होते तो दुनिया के वो काम जो बड़े लोग नहीं करते, तू भी रानी मैं भी रानी तो कौन भरेगा पानी, सारी रानियां बन के बैठ गई तो काम कौन करेगा, हमारे गटर कौन खोलेगा। हालांकि गटर खोलना भी कोई बुरी बात नहीं, गटर को भरना बुरी बात है। सफाई कौन करेगा, हालांकि सफाई करना कोई बुरी बात नहीं, गंद फैलाना बुरी बात है। लेकिन कुछ चीजें आज हमारे कल्चर में तो खास तौर पे बड़ी बुरी समझी जाती है कि मैं सफाई करूं, हाँ नहीं आप गंद डालें ये अच्छी बात है, मैं टॉयलेट साफ करूं नहीं आप टॉयलेट गंदा करें, क्या ये इज्जत की बात है। तो अल्लाह ताला ने जरूरत के तहत लोगों को मुख्तलिफ बनाया। और याद दूसरा असूल लिख लीजिए कि हर बंदा मुकम्मल नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कमी तो होगी, एक ज़ात है जिसमें कोई झोल नहीं है और वो कुल हो अल्लाह वहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद मुकम्मल का सिर्फ नफ्स से पाक रब की जात है। होता क्या कि हमें दूसरे का नक्स नहीं दिख रहा होता, उसकी खूबी दिख रही होती है और अपना अपनी 10 नेमते नहीं दिखती और एक महरूमी दिख रही होती है। किसी को इल्म में आगे कर देता है, किसी को जोहद में आगे कर देता है, किसी को तकवा में कर देता है। आप एक 3 सेकंड देती हैं, आप सोचिए इस सारे सिनेरियो में जिसमें हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा फजल क्या है किसी का? खाली खुद सोचे, फजल की बात कर ना, अल्लाह ने फजल किया, सबसे बड़ा फजल क्या है किसी पे अल्लाह का? वो तो है ही है कि ईमान और नेकी और इस्लाम, उसकी बात ना कीजिए। इंसानी कमियों बेशियों में किसी इंसान के ऊपर अल्लाह का सबसे बड़ा फजल क्या है? जी आप सब सर, सेहत, औलाद, जी आप हम जान पीछे से ही रख वक्त जी आप बताइए हिदायत जी आप देखिए आप सब ने जो कुछ कहा ना वो पार्शली तो ठीक होगा लेकिन जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वो नहीं है। सबसे बड़ा फजल अल्लाह पे ये है कि बंदा अपने दिए नेमत पे राजी रहे, राजी का रजा है। आप कहते हैं कि दौलत नेमत है, दौलत वाले भी कोई खुश नहीं देखे। आप कहते हैं इल्म नेमत है, इल्म पाने वाले खुश नहीं होते अपने इल्म से। हिदायत नेमत है, ये कुरान की क्लास नेमत है, लोग इस पर खुश नहीं होंगे। अभी तो आप खुश हैं, फिर आप बाद में इस पर खुश नहीं रहेंगे। सिर्फ एक चीज है जो बंदे को कंटेंट करती है कि अल्लाह जो तूने मुझे दिया वो दी बेस्ट था। रजामंदी, तस्लीम और रजा कि मेरे बारे में मेरे रब का हर फैसला बेहतरीन है। देखिए ना कि एक बंदा भूखा है और एक का पेट भरा हुआ है, पेट भरे वाले की नजर में अभी भी लालच है, ये इतना कुछ खा, इतना क्यों रखा इन्हों, मैं तो सारा खा ही नहीं सका, इस पे भी गिला है। खा पी के भी अभी कह रहे कि अभी नजर नहीं भरी, पेट भर गया नजर नहीं भरी। और एक बंदा भूखा रोजे से है वो उस पे भी खुश है, तो कौन खुशकिस्मत है? सबसे बड़ी जो नेमत है ना जो आप अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तूने मुझे जो दिया है ना मुझे उस पर राजी कर दे, जो दिया उस पर खुश और जो नहीं दिया उस पर इससे भी खुश, ये है सबसे बड़ी नेमत। वरना हर सुपरमैन से ऊपर कोई सुप्रीम मैन होगा, हर मिस वर्ल्ड के ऊपर एक और मिस वर्ल्ड होगी, हर अदाकारा के ऊपर एक और अदाकारा होगी और हर गुलकारा किसी दूसरी गुलकारा को कंपीट करने की लालच में होगी, दूसरे हुसन वाले को देकर के गम ऐसी क्यों नहीं, सच है कि नहीं? आप 1 लाख रुपए का जोड़ा पहन के शादी में चली जाए, कोई शादी आप सोच ले, क्या वहां जाके आपको अपने से भी प्यारा जोड़ा नहीं दिख जाता? आप बेहतरीन लड़की ढूंढ के ले आए, कहीं आपको लगा कि अगर मेरे लिए हुसन ही बहुत बड़ी बात थी तो ये सबसे हसीन लड़की मैं ले, 6 महीने में किसी और की बहू बेटी देखेंगी आप कहेंगी ये तो मेरी बहू से भी हसीन है। अब क्या हो, आपकी शादी बेहतरीन घर में हो गई, आपका ससुराल सब अच्छा होगा, ठीक है, हो सकता है उसके बाद आपकी छोटी बहन का रिश्ता इससे भी 4 गुना अच्छा आ जाए, आप फिर दुखी। आप बहू ले आए बड़ी अच्छी, दूसरे की बहू उससे भी अच्छी, कभी भी खुश नहीं रहेंगे। खुश वही रहेगा कि जो अल्लाह ने दिया बस फिर मेरा नसीब ये था, यही शौहर मेरे नसीब में था, यही बच्चे मेरे नसीब में थे, यही बहू मुझे मिलनी थी, एक्सेप्टेड, यही सास मुझे मिलनी थी, यही बहन। कहते कहा अल्लाह ने पैदा कर दिया मुझे आपके घर पे, बाद अपने मुल्क का खुश नहीं कहते हम क्यों पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं और हमें बाहर क्यों नहीं को जाने दे रहा। आज आप जिस चीज पे खुश होते हैं कल जरा आपको कोई दूसरी चीज दिखेगी आप उस पर खुश हो जाएंगे, कदर ही नहीं रहेगी आपको। आप आज सोच रहे हैं ना कि आप कुरान क्लास से बड़े खुश हैं, आप में से भी सारे खुश नहीं होंगे, फौरन तकाबुल करेंगे किसी दूसरे को देखेंगे। सिर्फ वो बंदा जीतेगा जो अल्लाह की रजा पे राजी, कि अल्लाह मेरा ये नसीब ही नहीं था जो तूने मुझे दिया। किब्र करते हैं आप, कभी छोटे बच्चों की बातें सुना करें, माई मम्मी योर मम्मी है। कल एक बच्ची की बात बड़ी अच्छी लगी, वो अक्सर ही ऐसी बातें करती मुझे समझ नहीं आती, लेकिन कल उसकी बात समझ आई, उम्रें पूछती रहती है हर एक की, उसकी उम्र क्या है, उसकी उम्र क्या, उसकी उम्र क्या है, मेरे से भी पूछती है, सर से भी पूछती है, अपने माँ बाप की भी बताती है। तो जो मुझे सबसे बड़ी है दुनिया में. आई लव माई मम्मी एंड वो सब सारे लोगों से बड़ी है. फिर मुझे समझ आया कि वो अम्मी की उम्र को बड़ा समझती है तो अच्छा समझती है. तो मैंने कहा तुम कितनी हो? कहती मैं 24 साल की. तो मैंने कहा फिर तुम पे तो नमाज फर्ज है. वेयर इज योर हिजाब? कहती आई विल डू आफ्टर 3 years. मैंने कहा फिर बड़ी ऐसी मासूम बातें करती है. तो मैं फील करती हूँ कि बच्चे भी जिसको बड़ा कहते हैं उसको ऊपर देखना चाहते हैं, सुप्रीम देखना चाहते हैं. हमेशा याद रखे अपने नसीब पे राजी है. और अल्लाह का एक असूल अपने दिल की तख्तियों पे लिख ले, सूरत इब्राहिम में आप पढ़ेंगे, आयत नंबर 7 में आता है, वइस्ताज़ना रब्बुकुम लाइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम. और तुम्हारे रब ने ये पुकार के कह दिया है, ऐसा नहीं कहा छुपा हुआ मैसेज नहीं, इट्स इज़्ज़त अज़ान जैसे दी जाती है, ओपन इन्विटेशन. अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा. वाला इन कफर तुम इन अजहबी रशदीद, न शुक्री करोगे, कुफराने नेमत करोगे, तकाबुल करोगे, अल्लाह पटक के मार देगा. और ये असूल मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ने वालों के साथ बहुत देखा. आप सिर्फ उस दिन तक इस क्लास में आएंगे जिस दिन आपका दिल अंदर से शुक्र गुजार होगा. जिस दिन अंदर ना कदरी और ना शुक्री आ जाएगी, अल्लाह पहले तो कोई बहाना बनाएगा छोटा मोटा जिसको आप समझ ही नहीं सकेंगे. 2-3 छुट्टियों के बाद वो असल बात होगी कि अल्लाह आपको बहाने नहीं देगा. हर दिन रो के निकला करें कि अल्लाह ये तेरा कलाम पढ़ रही हूँ. ये कोई छोटी बातें हैं जो हम सीख रहे हैं, जमीन और आसमान के मालिक की बातें जो हमें बता रहा है. तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इनकी कदर करो, इनकी इस नेमत को देखो. बाज औरतें 10-20 साल अपने शोहर के साथ गुजार देती, फिर ताना यही देती है कि मेरी बहन का मियां बड़ा अच्छे है तो उसको छोड़ दो. लेकिन याद रखें कि कभी तकाबुल ना करें. जिसने अपने शौहर अपने किसी भी रिश्ते का किसी नेमत का आपने तकाबुल किया आप उस चीज को खो देंगे. ये अल्लाह का फैसला है. इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं तुम अल्लाह से मांग लो, ये अल्लाह की बांट है. जो उसको जो दे सकता है तो तुम्हें नहीं दे सकता. इसमें एक और भी हमें बहुत ही खूबसूरत मैसेज मिलता है कि तुम लोगों के शहर में क्यों मुब्तला होते हो, किसी को बहुत नेमत में देखते हो. होता है ना कभी कभी ऐसा कि हम किसी की कोई चीज देखते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं बस सल्लल्लाहु मिन फदली, तुम उसे मांग लो. समझ गए? देखिए आप मिसाल देती हूँ कि आपने किसी को बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में देखा, बहुत सजा हुआ उसको जोड़ा, वो रेड कलर का सूट आप कहते बहुत अच्छा. अब एक सूरत आप कहते हैं कि अपना जोड़ा मुझे ही दे दो ना, तो हो सकता है वो मुरब्बत में दे दे और आप वही रेड जोड़ा पहने आपको जरा भी ना सजे. इसी तरह आप उससे जो मांग रहे हैं तो जहां से उसने खरीदा जाके आप भी ले लें. असल सारे खजाने तो अल्लाह के हाथ में है ना. किसी को भी कोई नेमत मिलती है तो आप अल्लाह से ले लें. आपको एक काम नहीं करना आता, दूसरा आपके घर में बहुत अच्छा कर रहा है और आप जेलस. यकीन करें बार सफर लोग अपने बड़ों से जेलस होते हैं, अपने उस्तादों से जेलस होते हैं. स्टूडेंट्स वो कहते हैं इनको बड़ा मिला हुआ हमें नहीं ये चीज मिलती. बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदली, अल्लाह से उसका फजल मांग लो, अल्लाह तुम्हें दे देगा. लोगों में ना उलझो. इन्नल्लाह का नबी कुल्ली शैइन अलीमा, उसको हर चीज का इल्म है, कुछ नहीं छुपा हुआ. तुम्हारे दिल की बातें कुछ नहीं पता. अल्लाह ताला ने इसमें दिल को खोल के रख दिया कि तुम अल्लाह से बेनियाज नहीं रह सकते. उसको हर चीज का इल्म है, किसको क्या देना था किसको क्या नहीं देना था, कौन डिजर्व करता था कौन डिजर्व नहीं करता था. हम होल्ड ही नहीं कर सकते उन चीजों को. चीजें मिले तो हम उनकी टेक केयर ही ना कर सके. बात चीजों में इतनी नजाकत होती है कि हम उनका हक ही नहीं अदा कर सकते. तो कहा अल्लाह को पता है कि तुम्हें ये सजदा कि नहीं सजदा. किसी को बेटा नहीं मिला, अल्लाह को पता तुम उसकी तरबियत कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे. इसी तरह किसी की शादी नहीं होती, फिर शुक्र करो ऐसी बैठी हो ना शादी नहीं हुई. जाती शादी होके और 1-2 महीने में वापिस आ जाती तो अल्लाह क्या आता का लकब लगा होता तो क्या देता था. हमेशा अल्लाह के राज फैसलों पर राजी रहिए. इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपका दिल गिना से भर जाएगा और जो उसके बाद आपको मिलेगा ना वो ये जरूर मिलेगा कि लोगों से बेनियाज हो जाएंगे. और आज आप लोगों से बेनियाज हो जाए अल्लाह लोगों के दिल में आपका प्यार डाल देगा. हम लोगों के पीछे फिरते हैं ना तो लोग भी फिर हमसे अपनी कीमत वसूल करते हैं. जिस बंदे को आप खुश करना चाहती है ना अल्लाह को खुश करना शुरू कर दे. चाहते हैं हमारे शौहर हमसे खुश रहे, कौन सी बीवी है जो नहीं चाहती. آپ چاہتی ہیں کہ آپ جب کو خوش کیجیے اللہ ڈال دے گا. ہم اللہ کو بلا کے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے رشتے داروں کو خوش کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوش رہیں. کبھی بھی نہیں ہوتے. لوگ کہیں گے اچھا جی آپ وہی ہیں جو یہ کام کر رہے تھے اور آپ یہ کر رہے ہیں. تو بہرحال بات بہت زیادہ عمل کی اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ چلانے والا بنا دے. اب اگلی آیتوں میں دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں جو بات ہمارے لیے رکھی تھی اسی کی تھوڑی سی کنٹینیوشن ہے. یہ جو آخری حصہ اس آیت کا تھا آیت نمبر 33 کا جس میں کچھ بات کمائی کی تھی اس 32 کا آخری یہ سمجھ گئے عورت اور مرد کی بحث. اصل میں یہ جو آیت 32 ہے نا یہ اگلی جو دو تین آیتیں آنے والی ہمارے سبق کے اینڈ تک یہ اس کا ایک قسم کا انٹروڈکشن تھا. کچھ عورتوں اور مردوں کی بحث چل رہی ہے اس آیت کے اوپر. کچھ تفاسیر بھی ملتی ہیں جیسے ایک تفسیر جو ملتی ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ نہ کہے کہ میں مرد ہوتی اور کوئی مرد یہ نہ کہے کہ میں عورت ہوتا. کئی لوگوں کو یہ بھی تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم عورت کیوں ہیں. بھائی تب آپ نے سے سنی کسی کو؟ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پہ کہتے ہیں کہ تب تمہیں پتہ کیا مراد ہے, اس سے مراد ہے کہ کوئی عورت یہ نہ کہے کہ فلاں مرد میرا شوہر ہوتا, یعنی کسی کے شوہر کو دیکھ کے یہ نہ کہہ دے یہ میرا شوہر ہوتا, اور کوئی شوہر کسی دوسرے کی بیوی کو دیکھ کے یہ نہ کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہوتی. کیونکہ ہمیشہ دوسرے کی چیز اچھی لگتی, یہ تو میں نے آزما لیا, ہمیشہ ہمیں دوسرے کی چیز اچھی لگتی اپنی اچھی نہیں لگتی. اور دوسروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے, ان کو اپنی نہیں اچھی لگ رہی ہوتی دوسری اچھی لگ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عورت اور مرد کی کچھ بات رکھی, اسی لیے اب اگلے حصے میں ایک ہلکی سی آیت ہے جو بالکل پچھلی آیتیں اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتے دار چھوڑ دیں. ختم ہو گئی یوسی کم اللہ والی آیتیں آ گئیں, وراثت کا قانون بن گیا. اب تم میں کسی کو حق سے دور کرنے یا حق لینے دینے کی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بس جو اللہ نے حصے مقرر کرنے تھے وہ ہو چکے ہیں. اب کیا کرو, اب تمہارے معاملے میں کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ تم ایسے وقتوں میں کیا کرو. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو چکے, وعدے کر لیے کچھ پرومسز کیے ہوئے تھے لیکن اب قانون بدل گیا, اب تو تم وصیت نہیں کر سکتے ون تھرڈ باہم, تو اب ان کو ان کا حصہ دے دو. کیونکہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے. اس آیت میں قانون وراثت سے متعلق کچھ چیز تھی, اس کے پیچھے تھوڑی سی ہسٹری ہے. اہل عرب میں ایک رواج تھا جن لوگوں کے بیچ میں دوستی ہوتی, جیسے عام طور پہ دوستیں ہوتی ہیں بھائی چارہ ہوتا تھا, مثال ہے کہ ایک فرا ہے تو ایک سائمہ ہے, اب یہ دونوں دوست ہیں. جب دوستیں بنتے تھے لوگ, یا مثلا احمد اور محمد دو دوست ہیں, جب آپس میں دوستی کرتے نا تو اس دوستی میں کیا کہتے کہ اگر میں پہلے مر گیا تو میری جائیداد کا تو وارث بن جائے گا, اور اگر تم پہلے مر گئے تو میں ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, اسی طرح کسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں, منہ بولا بیٹا, اور اگر وہ باپ مرتا جس نے بیٹا بنایا تو وہ سب کچھ جائیداد اس کو ملتی. اس آیت میں دور جاہلیت کے ان طریقوں کو کنڈم کیا گیا, کسی کو دے اور کسی کو نہیں دے سکتے. اللہ نے ہر رشتے دار کو اس کا حق دے دیا. رہ گئے وہ لوگ جن سے تم نے وعدہ کیا, کوئی غریب ہے کوئی تمہارا رشتے دار ہے تم کہتے ہو دینا, تو اپنی زندگی میں جتنا مرضی دے دو, یا پھر وہی بات جو پیچھے تفصیل سے ہو گئی کہ اپنی وصیت کے حصے میں سے اس کو دے دو. اصل میں اس سے زیادہ یہاں اس کی ضرورت نہیں, بس وہ ایک وقت کی یعنی جو اس دور کی بات چل رہی تھی اس ناطے سے یہاں یہ بات آ گئی کہ دیکھو اگر مجھ سے کچھ کہا ہے نا تو اس کو نبھا لو, لیکن اگر اللہ کا دیا ہوا حق کسی سے لے کر تم اپنی مرضی سے اپنی بانٹ کرتے پھرو تو یہ درست نہیں ہے. بعض دفعہ لوگوں نے اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں بچے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں خدمت کرتے ہیں کسی کی, اب مرنے کے بعد کیا کریں, اپنے بچوں کو بیٹوں بیٹیوں کو چھوڑ کر اس کو دے دیا جائے, بالکل بھی نہیں دیا جا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قانون وراثت کو ایک قسم کا اپلائی کرنے کا سائل تھا. کتنے خوبصورت طریقے سے قرآن کی روشنی میں لوگ اس کو مانتے تھے, आज हमारे मुल्कों में तो पूरा पूरा कुरान है, हमारे पास तो पूरा कानून मौजूद है ना, अमल क्यों नहीं होता? क्या आज हमारे अपने मुसलमान मुल्कों में भी वसीयत और विरासत और नसीहत के क्या है वही कवानीन है जो इस्लाम में? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कुरान तो है ही नहीं है। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है, यानी जो भी करोगे अल्लाह ताला को पता चल जाएगा। अब है अगली वो आयत, जिसको आयत 34 और 5 कहेंगे। ये है वो आयत जिसकी बुनियाद पे बहुत सारी औरतों को इस्लाम से दूर और अल्लाह से दूर किया जाता है। लिटरली औरतों को अल्लाह ताला से बदगुमान किया जाता है इस आयत की रोशनी में, कि देखो अल्लाह ने तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, तुम्हारे तो हाथ में कुछ नहीं, और दिस एंड दैट, और तुम अपने आप को क्या समझती हो। तो ये औरत और मर्द की जिम्मेदारियां और उनके हकूक, कुरान इसके बारे में क्या कहता है। 34 अर रिजाल कव्वामून अला निसा, मर्द औरतों पर कव्वाम है। कव्वाम क्या होता है? काम यकीमो यकीमोन कयामत, आपने ये नाम सुने होंगे, कायम करना। यहां लफ्ज देखिएगा कव्वामोन के बाद अला आ रहा है, ठीक है, काम अला आ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे इसी सूरत में आगे आएगा खून कव्वामीन बिल्किस्त, तो वहां बा आता है। जब किसी लफ्ज कामा या क्याम के बाद अला आ रहे, जैसे कि यहां आ रहा है, तो इसका मानी क्या है? किसी के ऊपर मुसल्लत होना, यानी उसको डोमिनेंट कर देना, हाकिम होना और मुंतजिम होना। अर रिजाल कव्वामून कहकर यहां मर्दों को के टेक केयर हो। कव्वाम और कय्यम कहते हैं मैनेजर को, इंग्लिश में आप लिखते हैं ना फलां शख्स इस इदारे का मैनेजर है। टेक केयर मुदब्बिर मुतकफ्फिल, उसका हिसाब किताब रखने वाला, मामलात को दुरुस्त तरीके से चलाने वाला, हिफाजत करने वाला, निगरानी करने वाला। तो गोया के मर्दों को यहाँ एक जॉब दी गई, और वो क्या कहो मर्दों, तुम अपनी औरतों के ऊपर कव्वाम हो, उनके जिम्मेदार हो। औरत मर्द की कफील नहीं हो सकती, कव्वाम नहीं हो सकती। फितरत का असूल बदल गया जब से औरत कव्वाम बनने की कोशिशों में रही। मर्द को अल्लाह सुब्हान व तआला ने फितरी तौर पर दर्जा दिया। कैसे दिया? इस आयत में दो वजूहात बताई, अब आप 1 और 2 करके लिख लीजिए। क्या रिजाल कव्वामून क्यों है, इसकी पहली वजह क्यों है? नंबर एक, दिवाफत लीजिए या ए लिख लीजिए। वजह क्या है इसकी? कि वजह ये कि अल्लाह ने बुजुर्गी दी बाज को बाज पर। इससे मुराद के मर्दों का जिस्म मजबूत है, मर्द स्ट्रॉन्ग बॉडी के होते हैं, फजीलत है ना, हद लंबा होता है मर्दों का। अमूमन जहनी सलाहियत बुलंद होती है, मर्द ज्यादा चल सकते हैं, ज्यादा वजन सह सकते हैं, डरते नहीं है, खौफ ज्यादा नहीं होते। ये हम सब देखते हैं कि नहीं? ये हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं है कि मर्द फिजिकली औरत से स्ट्रॉन्ग होता है, और ना पता चले तो एक चूहा आ जाए तो घर में देख लिया करें क्या होता है। चोरी रात को आ जाए तो मर्द का रवैया और औरत का रवैया, इसमें कितना फर्क होता है, ठीक है? इसको तो मानना पड़ेगा ना सबको कि मर्द फिजिकली स्ट्रांग होता है। अल्लाह ताला ने उसको कुछ खूबियां ऐसी दे दी है, कुछ चीजें होती है एक्सेप्शन, उसको पीछे कर दे, वो तो आटे में नमक के बराबर है, अमूमन ऐसा ही होता है। पहली बात, और वो है कि मर्द औरतों पर खर्च करते हैं। पहला वजह क्या थी? कि अल्लाह ने बास को बास पर फजीलत दे दी, और सेकंड वबीमा अनफकू मिन अमवालिहिम, और इस वजह से भी कि वो अपने माल को खर्च जो करते हैं। खत्म। तो ये लग गई मर्द का इतना ही रोल है, हम पहले इस पे बात कर ले फिर अगले हिस्से पे चलेंगे। मर्द की फजीलत दो वजूहात से, पहली वजह क्या है कि मर्द स्ट्रांग है, फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग होता है, इमोशनल नहीं होता, डरता जल्दी नहीं, फिजिकली भी स्ट्रांग होता है, काम भी ज्यादा कर सकता है, बाहर के काम भी कर लेता है, और दूसरी वजह यह कि वो अपने माल का बेशतर हिस्सा घर वालों पे लगा देता है। इसमें किसी को कोई एतराज है? सिंपल सी बात बता के कह दिया कि मर्दों को जिम्मेदार होना चाहिए। इस आयत ने मर्दों को मजबूर कर दिया, बिस्तर तोड़ना, ये शराब और चर्स के नशे में छूट के और फिल्में गानों में पढ़ना और औरतों को घरों में काम करने पे मजबूर करना, ये मर्द की मर्दानगी के खिलाफ है। फितरत का निजाम बदल गया। जैसे ये देखिए चेयर और टेबल है ना, बस हमेशा मैं औरत और मर्द को इसी मिसाल से समझती हूँ कि टेबल हमेशा 2-3 बालिश ऊंचा ही होता है चेयर से। चेयर जिसपे मैं बैठी हूँ थोड़ी सी नीचे है और टेबल ऊपर है। आप करिए इन दोनों को बराबर, कुर्सी मेरी लाइए इस टेबल के बराबर, तो क्या इस टेबल से फायदा उठाएगा? नहीं उठाएगा ना। तो मर्द है टेबल, कवाम स्ट्रॉन्ग सीधा, इसके ऊपर आप चीजें क्यों रखी हुई? क्योंकि इसके पांव स्ट्रॉन्ग है। चेयर क्या है? झुकी हुई तभी हुई गोल स्मार्ट घूमने वाली, ये औरत है। औरत और मर्द का अल्लाह सुभान व तआला ने जो फर्क रखा है ना, वो जरूरत का फर्क है। करने की जरूरत हुई, मर्दों की तो बात खत्म हो गई, अब इसके बाद औरतें कौन है? फस्सालिहातुन, औरतों में क्या खूबियां होनी चाहिए? नंबर एक सालेह हों, नेक बीवियां, कानितातुन इताचार हों। तीसरी हाफिजातुल्लिल्गैब, गैब में हिफाजत करने वालियां हों। कैसी? बिमा हफिजल्लाहु, अल्लाह की हिफाजत से, यानी जैसे अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, उनके हकूक की और उनके जान माल की, इसी तरह औरतों को अपने शौहरों की चीजों की हिफाजत करनी चाहिए। बस आगे फिर तीसरा टॉपिक है उसको दिए भी छेड़ेंगे अभी। इतनी बात में देखे कि औरत की खूबियों में सबसे पहली खूबी क्या है? सालेहा। क्या ये जरूरी नहीं था कि औरत कौन सी हो? मोमिना मुस्लिमा। सालेहा का लफ्ज क्यों आया? मुझे ऐसे लगता है कि औरत का जो तारुफ है ना वो सालेहा है, इस्लाह करने वाली, लगा के रखने वाली। मर्द के अंदर अगर जोश है, अवामियत है, उबाल है उसके अंदर, तो औरत के अंदर जो खूबी है वो क्या है? कि वो बना के रखने वाली हो, इस्लाह वाली हो, लड़ने वाली औरत नहीं। घर में गलत चीजों को देख के चुप नहीं रहती, इस्लाह करती है, सुलह जो होती है। आप लो स्वादलाम खासे जितने मुमकिन लफ्ज है वो लिख लें, सालेहा सुलह, फिर इसी तरह देखिए इस्लाह, बच्चों की इस्लाह, घर की इस्लाह, मसलहत पसंद होनी चाहिए औरत, औरत की ये सबसे बड़ी खूबी है। फिर आप देखिए कानिता क्या होती है? दो चीजें हैं कनूत में, पीछे लिखाई थी भूल गए होंगे दोबारा लिख लें, हजरत मरियम के किस्से में आया था ये लफ्ज कानिता या कानित कहते हैं। दो राजी दवान क्या है? एवरलास्टिसिटी, हमेशा, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, वो है दवा, हमेशा काम करना, और साथ ही साथ के कि काम करने के बावजूद आजजी भी हो। कनूत कहते हैं ऐसी कैफियत जिसमें बंदा हमेशा ही एक सूरत पे रहे, यानी कि कभी कभार मूड बड़ा अच्छा हो गया तो बात मान ली तो कानिता बन गए, अच्छी है तो हमेशा ही अच्छी रहे, फ्लक्चुएशन ना आए उसके मिजाज में, और काम करने के बावजूद आजिज भी रहे, ताने ना देती रहे, चाय का कप ऐसे ना लाके रखे कि 2-3 घूम रहे वो प्लेट में निकल जाए, पिए या आपका चौथा कप है सुबह का, इससे तो बेहतर ताप ना ही मिलाते। इसीलिए औरतों से जब मर्द चाय बनवाते हैं तो उसमें एक चम्मच चीनी ज्यादा डलवाते हैं, क्योंकि कड़वी बातें भी तो साथ होती है। ऐसे ना करें, दिल की खुशी से करें, करें बस करें ना, क्या बातें बताने लग गए हैं। इतना ही बड़ा था कि मर्द का काम है बात जाके रोक डालते हैं कि आप कितना कमाते हैं और आप कितने स्ट्रांग हैं, हाँ नहीं, जब तक सारे पजल्स पास ना हो तस्वीर पूरी नहीं होती। इसलिए औरत और मर्द की लिमिटेशंस को देखना है। औरत की सिफात में हाफिजात की जो सिफत है, हिफाजत, किसकी हिफाजत? सबसे पहले तो अपनी इज्जत की हिफाजत। एक लड़की और औरत अपने शौहर की अमानत होती है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। जो लड़कियां शादी से पहले खियानतें कर लेती हैं वो अपने आने वाले शौहर का हक मानती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कवारी और जिसको आप कहना चाहिए कि बाकिरा में एक कशिश रखी है, और जब औरतें पहले ये सारी चीजों में इन्वॉल्व होती हैं तो उनके अंदर वो नजाकत खत्म हो जाती है, और शादी के बाद तो ये फिर हद के काबिल जुर्म बन जाता है कि एक लड़की अपना मर्द मिल जाता तो अच्छा था। जैसे बाद लोग मंगनी करके भी तोड़ देते हैं क्योंकि उससे अच्छा घर मिल गया, तो उसको तोड़ा दूसरी तरफ चले गए तो फिर तोड़ते ही रहेंगे। फिर इसी तरह आप देखिए कि हिफाजत में मर्द के माल की हिफाजत, घर इस्लाम में मर्द का होता है, क्यों? क्योंकि मर्द कवाम है, कमाता है। हाँ, जब औरत कमाने लग जाती है तो वो कवामियत पे बात ही नहीं बनती, वो एक एडवर्स कंडीशन है जिसको आज हम देख रहे हैं। तीसरी चीज आप देखिए कि हिफाजत में उसके बच्चों की हिफाजत है, जिसको आप यहां लिख लीजिए तरबियत औलाद, लिख ले कि बच्चों की तरबियत मां का काम है। बाप तरबियत नहीं करते, वो तो कर सकते हैं, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जरा बाप को बिठाएं थोड़ी देर बाद दोनों ही रोते हुए उठेंगे, वो उसकी नहीं सुन रहा, वो उसके बच्चे से ज्यादा बाप का शोर होता है। आखिर वो कहते हैं कि मेरे से नहीं आते थे, बड़ा मारता था, ये कहता था तुम नहीं पढ़ रही, ये नहीं, यानी उसको कहता तुमने ये ना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें मारूंगा। तो इसने कहने का, अबू जब मैंने पढ़ने लिखने के मैं मर ही जाना है तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो बापों में ना वो टॉलरेंस होता है ना वो बर्दाश्त होती है, ये आप नहीं करना है। आप आइमे कराम की माओ को पढ़ लें और नबियों की माओ को पढ़ लें, बच्चों की तरबियत माओ ने की, इसमें तो सच है। बास माओ को गिला होता है, मर्द जिम्मेदारी नहीं लेते, तवज्जो नहीं देते, ठीक है, ऑफ कोर्स गाड़ी के सारे पहिए सही होंगे तो बात बनेगी, ये नहीं कि माँ तो अच्छी तरबियत करे और बाप उनको गलत चीजें दिखाए और उनकी गलत मान ले, मैं इस टेंस में बिल्कुल बात नहीं कर रही। लेकिन अगर आपके शोहर दिलचस्पी नहीं भी लेते बच्चे की तरबियत में, तो बहुत सारी मिसालें मौजूद है आपके पास कि माँ नहीं तरबियत की। माँ के दूर का भी असर होता है और माँ के सब्र का भी असर होता है। तो माँ की जिम्मेदारी है कि उस बच्चे की माल कमा के देता है, अगर शोहर की कमाई है तो बीवी को उसको कहाँ देना है, कैसे देना है, मशवरे के साथ। देखिए, ना तो इसमें हर वक्त इजाजत है कि आप सेलफोन पे उंगली रखें, एक अंडा खरीद लो और वो एक फकीर आया उसको 10 रुपए दे दो, ये भी नहीं होगा, और ये उसको तोहफा देना है तो दे दो, और ना इसमें इस तरह से छुपाया जाएगा कि बात कुछ भी ना और अगले को लगे पता नहीं क्या पहाड़ हो गया। मैं इन सारी चीजों के ऊपर अक्सर एक बात सोचती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंसान अपनी जिंदगी पे गौर करता है, मैं सोचती हूँ कि एक दफा अगर शौहर और बीवी का दिल मिल जाए तो शौहर भी आपका और परस तो बड़ी छोटी चीज है, हर चीज आपकी है। जो औरतें जिंदगी के शुरू के 1-2 साल तक हर बात को कहे ठीक है, ओके, गलत नहीं, हराम नहीं, वो तो फिर आपका फैसला ही गलत था अगर आपने किसी कबायत के मुर्तकिब से शादी कर ली। मैं इस्तिस्नाई सूरतों पे बात ही नहीं करती, और अमूमन जो बात मेरे जिंदगी में होती है ना, वो इखलाकियात, गुस्से का तेज है, गाली दे देता है, मिसाल है, या कुछ और बातें ऐसी चीज जिसका इखलाकियात से ताल्लुक है ना, और सकती है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। दीन के मामले में आपका मेरा अपना इख्तियार नहीं है, वो अल्लाह का हुक्म है, लेकिन इसके बरक्स जो है वो इंसान अपनी बात को समझ लेगा। शुरू में मान लीजिए, फिर सारी जिंदगी मानेंगे आपकी। अगर आप शादी करके जब भेजे गए हैं ना, तो आपको ये सबक दे दिया गया ना कि सालिहातुन कानितातुन हाफिजातुल गैब, तो आप देखेंगे कि शौहर के दिल में आपकी जगह बनेगी। आप उस इंसान को बुरा कह सकते हैं जो आपको हर बात पे ओके स्माइल, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई नाराजगी नहीं, आप एक दफा अपनी जगह बनाए, देखिए कि आप की जगह बन गई ना तो आपकी बात की भी जगह बन जाएगी। देती हैं औरतें, एक बल्कि सीरीज हमने की थी मदर्स ऑफ बिलीवर्स, 1-2-3 साल पहले की, पाक रातों में, कहीं ना कहीं उसकी रिकॉर्डिंग रखी होगी, कैसे बिगड़े हुए शौहरों को बीवियों ने ठीक किया, और बड़ी खूबसूरत कहानी भी सुनाई, बहुत ज्यादा लोगों ने उससे फायदा भी उठाया। पहले सबर करना होगा, लेकिन जब शुरू से नशूज हो, आयत को पूरा करके फिर बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो एक अच्छे हालात है, ठीक हालात की बात थी, हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ आगे लिख लीजिए अगले हिस्से का टॉपिक, कि अगर औरत बिगड़ जाए, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना, और वो औरतें या बीवियां जिनके बारे में तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, रवैये से नशूस दिख रहा है बीवी के, यहां लिख लीजिए कि बिगड़ी हुई बीवी का इस्लाह का तरीका है। सूरत क्या आखिर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो बिगड़े हुए शौहर का भी बिगाड़ की बात की चले आगे। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि आम हालात में तो बीवी ऐसी थी, लेकिन आगे जाके उसकी बात बिगड़ गई। तो क्या करो, आप देखिए जरा इस आयत पे नजरे जमाते और नशूज के लफ्ज को समझ लीजिए, नशा उठान, जैसे एकदम कभी कभी कोक का कैन खोले ना तो अंदर से इस तरफ फवारे की तरह पानी आता ना, तो नशा नशूज कहते हैं सरकशी, रिबेलियस, मिजाज ही बिगड़ा हुआ है। देखिए नशूज से मुराद औरत और मर्द की तबीयत का फर्क नहीं है, मिजाज का फर्क भी नहीं है। नशूज से मुराद औरत के अंदर खुद को बड़ा समझने का मादा कि वो मर्द को जिसको कहते हैं किसी नोट पे ना रखे, कहना नहीं चाह रही जूती का लफ्ज, लेकिन जिस तरह कुछ औरतें हैं उनके अंदर इतना अपने आप का बड़ापन है क्योंकि तरबियत ही ऐसी हुई, वो अपने शौहर के साथ कोई बात शेयर, दो फुट दो इंच ऊंचा लंबा दिखना चाहती है, जिनके मिजाज में ये है ही नहीं है कि मेरे सालेहा खानदार हाफिजा बन के रहना, कभी ऐसे होता है हर वक्त लड़ना हर वक्त झगड़ना, बल्कि ये नशूज बदकारी तक पहुंच जाए जो अपने शौहर को दिल से ही पसंद ना करें। ये सारी इसमें चीजें आती हैं जिसमें बाद में बात करना चाहूंगी, लेकिन आप कहेंगे इतना बड़ा बिगाड़ के मर्द बेचारा सीधा और औरत का मिजाज सीधा नहीं हो रहा, अब क्या करो। एक लफ्ज में इलाज हो सकता था, अब पढ़िए गाय वो अल्लाह की तखाबून नशूजा बनना पतल को बनना, बात खत्म, ये बेस्ट नहीं इलाज ढूंढा। बीवी में सरकशी हुई तलाक दे दो, तुम्हें कौन सी कमी है कर दूसरी जगह कर लो, कितना आसान था। लेकिन इस्लाम चाहता है घर ना टूटे, लिख ले घर टूटता है ना तो इस्लाम भी टूटता है। जिस मुस्लिम सोसाइटी में कुफार के मुकाबले पे घर टूटने लग जाए ना, आप छोटे छोटे ब्लॉक्स जोड़ के रख दें बीच में कोई गम ना हो, पूरा घर बनेगा, एक हल्की सी भी लरजाहट होगी ना तो पूरे का पूरा किला गिर जाएगा। इस तरह जब बीच में इखलाकियात की खूबसूरती नहीं होती तो बने हुए घर टूट जाते हैं। अल्लाह कहते हैं घर ना तोड़ो, क्या करो, नंबर वन फाइजू बुनना, बस इनको नसीहत करो। फाइजू बुनना का रूट क्या होगा, वाओ ये वही है जिसको वास कहते हैं, और वास कहते हैं दिल को नरम करने वाली बात। शोहरों से कहा बदतमीजी ना करो, उससे गालियां ना दो, मैके का ताना ना दो, उसके माँ बाप को फोन ना करो, बल्कि प्यार से समझाओ क्योंकि औरत प्यार से समझती है। पहला मतला हल्की फुल्की बात करो, समझाओ तरीके से करो, कभी आंखें दिखा दो, कभी ऐसे हल्का फुल्का उसको खुद समझाओ, मत किसी दूसरे से बात करो, मत अपनी माँ को जाके कहो क्या ढूंढी है मेरे लिए। औरतें होते हुए सोचिए कि जब किसी औरत से कोई गलती हो और उसका शौहर ही उसको समझा दे प्यार से और मोहब्बत से समझाए कि बेगम ऐसे नहीं, देखे बेगम आई लव यू, ऐसे ना करो, ये नहीं, तो औरतें समझ जाती है ना, जो अच्छी होगी ना वो तो फौरन समझ जाएगी। लेकिन यहाँ तो मशहूर है अंदर कुछ बड़ा होगा अपने आप को खुद समझने का कि मैं तो उस यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हूँ और मैं तो इतनी बड़ी पावर थी और दिस एंड दैट, तो अब कहा नहीं समझती, कुछ महीने इस तरह सबर दर गुजर करो, नहीं बनता तो घर बचाने के लिए अगला स्टेप वह जरूर नफिल मदाजी, अरे इनको इनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ दो, यानी नसीहत और मलामत से काम ना चले तो बिस्तर अलग कर लो, यानी कुछ अरसे के लिए फिर ताल्लुक छोड़ दो, या नोट कीजिएगा उनको नहीं घर से निकालना, खुद घर छोड़ो। बुखारी की रिवायत है कि ला तहजर इल्ला बिल बैत, शोहर बीवी में चपले बात की इजाजत है कि बीवी को घर से निकाले और ना घर छोड़ के जाए, घर में रहो अगर घर चाहते हो जुड़ा रहे, ठीक है। तो क्या करो, बिस्तर छोड़ के दूसरे कमरे में सो, बीवी के लिए ये बात बहुत ज्यादा उसकी अदा को हर्ट करती कि उसका शौहर उसके साथ सोना छोड़ दे, घर में रहो, लॉबी में सो जाओ, बच्चों के कमरे में चले जाओ। जो बीवी तो वाकई बाशौर होगी ना वो तो इसके ऊपर परेशान होगी। देखिए कोई बीवी फितरतन ना भी पसंद करे ना कि शौहर किस उसके साथ कोई ताल्लुक रखे या शौहर का कोई तकाजा उसको पसंद ना हो, नहीं पसंद करती, लेकिन जब शौहर कह दे कि मैंने तेरे साथ नहीं सोना तो ये चीजों बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये किस्म का टॉर्चर है। शौक लगाओ उसको, बिजली का झटका लगाओ, अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, कुछ दिन के बाद समझ आएगी कि ये तो बात खराब हो रही है, कुछ फिर भी नहीं समझी कहती नहीं तो ना सिर्फ तुम रूठे हम झूठे। तो फिर आखिरी स्टेप क्या है, बोलना, वद्री भू बोलना, उनको जर्ब लगाओ, जर्ब लगाओ। अब देखिए लफ्ज दारा व यद्रिबु से क्या होता है मानी, मारना, हालांकि ये मारना नहीं है, दर्ब लगाओ। अब कोई भी लफ्ज है तो उसका तर्जमा हम कहां से देखते हैं, डिक्शनरी से, राइट। तो कुरान की डिक्शनरी क्या है, पहले बताया था सीरत। कुरान में नमाज का तरीका ना, अकीमुस्सलात, तरीका कहां लिखा है, नबी सल्लम ने बताया सल्लु कमा रअइतु मुनीसल्ली। तो वद्रिबु हुन्ना की तफसीर कहां से देखेंगे, नबी के बाद से देखेंगे। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि कोई अपनी बीवी को अगर किसी ऐसे हालात में कि तलाक नहीं देना चाहता लेकिन फिर भी हाथ लगाता है तो उसकी हद के मिसवाक, पीलू की एक छोटी सी मिसवाक है ना, उसके साथ हल्की सी चपत कि ना उससे निशान पड़े और ना आवाज पैदा हो और मुंह पे नहीं मारना। इस लफ्ज ने आज की औरत को मौका दे दिया कि मारो इनको। बास लोगों ने आपको तो बास कुराने पाक में वद्रिबु हुन्ना का एक तर्जमा उर्दू में हम कहते हैं ना मारो इनको, और इंग्लिश में लिखा हुआ किल देम, मार का मुमकिन। तो आप दाराबा को हदीस से लेंगे। अच्छा अब हल्की सी मारो, जैसे बिजली का झटका देते हैं तो बार दफा वो जिस्म किससे काम करना शुरू कर देते हैं जो नहीं करते, इलेक्ट्रिक शॉक्स है। और फाइन अतानकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला, अगर इस झपट से वो बात मान जाए, इताअत कर ले, तो अब खबरदार उनके आगे ना बोलना, अब उनको ताने ना दो, क्योंकि इन्नल्लाह कान अलियन कबीरा, अल्लाह बुलंद भी है और बहुत बड़ा। तुम इस बीवी पे बड़े हो, तुम पे बड़ा अल्लाह। अच्छा अब ये भी कर लिया, अगली आयत के साथ मौजू पूरा होता है इसलिए उसको साथ लेंगे, कि तुमने ये करके देख लिया, बीवी फिर भी नहीं ठीक हुई, चपत खा के भी नहीं ठीक हुई, अब घर की बात बाहर ले तो क्या करो, फिर एक हकम यानी थर्ड पर्सन मुकरर करो, ही से यहाँ क्या मुराद है, मर्द शोहर के घर वालों से, हकम मिन अहलिहा, और एक हकम हा से मुराद बीवी फीमेल है मर्द औरत की तरफ से। एक लफ्ज होता है हाकिम और एक होता है हकम, फर्क क्या दोनों में, हाकिम होता है अदालत में काजी जज बड़े लेवल पे, हकम होता है जिसको पंजाबी में पंचायत कहते हैं, घर का ही कोई एक समझदार, मामू को फुफा को खालू जहां दीदा बंदा उनको मुकर्रर कर। अब वो दोनों बातें करेंगे, अगर वो दोनों इस्लाह करना चाहेंगे तो अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान मुवाफ़क़त पैदा कर देगा, ये दोनों घर को जोड़े, जिसको आप कह सकते हैं कि काउंसलिंग करवाएं, उसकी सुने उसकी सुने, झूठ भी को बोल देता है ना तो इज अलाउड, हकम जाए उधर सुनाओ भाई क्या सुनाते हो। दस बातें उसने शौहर के खिलाफ की, एक बात कहती है कि बड़ा अच्छा भी है, इस बात में अच्छा, बस हकम वहां से उठे, इधर आया, सुनाओ भाई मियां क्या बात है, तुम्हें कैसी लगती है ये वो, तुम ये कहते हो, वो तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, वो एक बात जो उसने तारीफ की ना वो उसको सुना देते कि अच्छा हाँ ये बुरा तो वो भी नहीं है, हाँ बुरी तो वो भी नहीं, ये भी अच्छी, अच्छा कहती हो, इधर से उठे थे, अरे मियाँ बात ही खत्म, वो तो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, ये है ये वक्त किल्ला हो गई ना हुआ, तारीफें करो एक दूसरे के सामने, उनकी बुरी बातें छोड़ो, गड़े मुर्दे ना खेड़ो। तो इन अल्लाह का न अलीमन खबीरा, अल्लाह ताला सब कुछ जानता और बाखबर है। ये है टूटते हुए घर को बचाने का नुस्खा, ना तो एकदम तोड़ो और ना एकदम जोड़ो। वैस ने क्या किया, लव एट फर्स्ट साइट, और तलाक एट सेकंड साइट। कल हम शुरू में कुछ मिनट इसके ऊपर बात करके अगला सबक शुरू करेंगे, लेकिन बात वाजे है कि तदरीज से काम लो, एक दम ना तोड़ो घर ही टूट जाए। आप देखिए कि ऊन के अंदर गुंजले फट जाती है ना, कभी आपने ऊन से स्वेटर बुने, अब कहां बुनते होंगे लोग, और कभी उसमें वो नॉट्स पड़ जाए तो क्या करते हैं, जितना खींचते हैं ना उतनी गिरह पड़ती है, छोड़ दो थोड़ी देर, पहले तुम फ्रेश माइंड हो जाओ। आप देखेंगे उसका सिरा मिल गया ना तो उसको ढीला ढीला करते जाएंगे तो सारा गोला खुल जाएगा। रिश्तों की गिरहें भी ऐसे ही होती हैं, दिल से पढ़ते पढ़ते जुबान पे जाती हैं और उससे आगे पता नहीं कहाँ कहाँ जाती हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सबको इस मौजू पर शरह सदर दे दे, हम अपने भी घर बचाए, अपने बच्चियों के मामलात में भी ना बोलें, और सोसाइटी के अंदर जहां भी शोहर बीवी का गुनाह اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کوئی رہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال تو بات ہے تو آپ لوگ لکھ کے دیجیے گا. آج آن لائن والوں کا یہ ایکسٹرا ٹائم جو سب کا یہ دو بجے بند کرتے ہیں.
شیخان جی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے. تو الحمدللہ آج اسپیشلی عورتوں کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی اچھی کوالٹیز بتائیں کہ یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے ہیں. کین اے ہسبینڈ اسٹاپ ہز وائف فرام میٹنگ ہر فرینڈز اینڈ فیملی؟ یہ استاذہ زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. اور موسٹ پروبیبلی استاذہ بھی یہ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ یہ کوشچن آپ اگر اسلام کیو اے پہ ڈالیں گی تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے آنسر صحیح مل جائے گا. یعنی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ کوشچن آلریڈی وہاں میں سرچ کر چکی ہوں, تو ان شاء اللہ آپ کو وہاں سے مل جائے گا. میرے ذہن میں نہیں ہے کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا. اپنی اصلاح کرنی ہے ہر وقت, بالکل پرفیکٹ بلینڈ آف وائف اینڈ ہسبینڈ. بالکل بالکل الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب ایسی آیتیں آتی ہیں نا, اور الحمدللہ ہر ہی آیت ہمارے لیے خوشخبری بھی ہوتی ہے اور ہمیں بہتر بنانے کے لیے بھی ہوتی ہے, ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. سو الحمدللہ ہے. تو ہم مزید بات نہیں کریں گے اور یہیں سٹاپ کریں گے. الحمدللہ الحمدللہ. تو آج کے لیے کیا ہوم ورک لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ جی کیا ہوم ورک سیٹ کیا آپ نے پھر؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے پیارے ایمان کی کوالٹیز پر عمل کرنے کی توفیق دے. جی بالکل, آمین. توڑنا نہیں جوڑنا ہے. بالکل. فور می میں نے یہ سوچا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی عورتوں کی ایز اے وائف بتائی ہیں تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان انسان ہے, کمزور ہے, ہمیشہ کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ ٹو ورک آن دیم ان شاء اللہ تعالیٰ. جی پوچھنا اپنے سے کہ ہم نے یہ تمام کوالٹیز ہوں. بالکل بالکل. پھر کوشش بھی کریں نا ڈفرینٹ طریقے استعمال کرنے ان شاء اللہ تعالیٰ. چلو جزاک اللہ خیر کیسے ان شاء اللہ یہاں اسٹاپ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.